आगे सबक देखिए भाई, किताबुल लुक्ता قال اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو الأفضل عند عامة العلماء وهو الواجب إذا خاف الضياع على ما قالوا. भाई गुज़श्ता सबक में हमने बागियों के अहकाम पढ़े थे, मैंने आपको बतलाया कि बागियों के अहकाम के सिलसिले में हमारे मुक्तदा जो हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं भाई, क्योंकि बागियों के अहकाम का पता उन्हीं से चलता है। उनसे पहले जिस कदर लड़ाइयां थीं वो कुफार के साथ थीं, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में बागियों के साथ भी लड़ाई हुई, तो उनसे इन बागियों के अहकाम का पता चलता है। और आपको मैंने बतलाया कि बागी वो हैं जो इमाम हक की इताअत से निकल जाएं और दावा करें कि हम हक पर हैं। अगर कुछ मुसलमान जो हैं वो इमाम हक की इताअत से निकल गए इस वजह से कि इमाम ने उन पर जुल्म किया है, तो इनको बागी नहीं कहेंगे, इनके साथ लड़ाई करना या इन्हें कत्ल करना जायज नहीं है। हां अलबत्ता अगर वो लोग इमाम हक की इताअत से निकले हैं और इमाम हक उनको हक की तरफ बुलाता है और दावत देता है और वो कहते हैं कि नहीं हम हक पर हैं, तो ये लोग बागी हैं भाई। अब इनके साथ क्या इब्तिदाअन जंग की जाएगी या वो लड़ाई की इब्तिदा करें तो फिर जंग जायज है। तो साहिब हिदाया ने बतलाया था कि साहिब कुदूरी की इबारत से मालूम होता है कि जब बागी लड़ाई का आगाज करें तो फिर इमाम उनके साथ लड़ाई करेगा, लेकिन मशहूर इमाम इमाम खाहर ज़ादा रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि बागियों के साथ लड़ाई की इब्तिदा करना भी जायज है जब वो जमा हो जाएं, इसलिए क्योंकि यहां पर हुक्म का दारोमदार वो उनके किताल पर नहीं होगा बल्कि दलील किताल पर होगा। जब वो एक जगह जमा हो गए हैं और इमाम की इताअत का उन्होंने इनकार कर दिया है तो ये लड़ाई की दलील मौजूद है, जब ये दलील मौजूद है तो अब उनकी तरफ से बाकायदा लड़ाई के इब्तिदा का इंतजार नहीं किया जाएगा बल्कि इमाम भी लड़ाई की इब्तिदा कर सकता है भाई। और नींद इसलिए क्योंकि अगर इमाम मजीद इंतजार करेगा तो कहीं ऐसा ना हो वो लोग और ज्यादा कुव्वत पकड़ जाएं और फिर उनका मुकाबला करना ही मुमकिन ना रहे भाई। तो लिहाजा यहां हुक्म का मदार दलील किताल पर होगा और वो उनका जमा होना है और इमाम की इताअत से रुकना है। और अगर लड़ाई से पहले इमाम को पता चल गया कि ये लोग असलाह वगैरह खरीद रहे हैं तो इमाम उनको पकड़ ले और कैद में डाल दे यहां तक कि वो तौबा कर ले तो फिर उनको छोड़ दे। और कहते हैं इमाम साहब से जो रिवायत है कि मुसलमानों के अंदर फितना वाकई हो तो आदमी को अपने घर को लाजिम पकड़ना चाहिए, यानी उस फितने में दखल नहीं देना चाहिए। कहते हैं वो रिवायत उस हालत पर महमूल है जब मुसलमानों का कोई इमाम हक ना हो, और अगर इमाम हक मौजूद है तो फिर उसकी मदद करना मुसलमानों पर वाजिब है। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि अगर बागियों की एक जमात के साथ मुसलमानों की लड़ाई हो रही है और दूसरी जगह उनकी दूसरी जमात भी मौजूद है तो फिर इन बागियों में से जो जख्मी हो उनको फौरन कत्ल किया जाएगा और जो भाग रहे हैं उनका पीछा किया जाएगा ताकि उनको कैदी बनाया जाए या कत्ल किया जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो ये अपनी उस दूसरी जमात के साथ जाकर मिल जाए। तो लिहाजा इनके शर को खत्म करने के लिए इनके जख्मियों को कत्ल किया जाएगा और भागने वालों का पीछा किया जाएगा, लेकिन अगर इनकी और कोई जमात मौजूद नहीं है तो फिर इनके जख्मियों को कत्ल भी नहीं किया जाएगा और भागने वालों का पीछा भी नहीं किया जाएगा। और नीज साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि बागियों की औलाद वगैरह जो है उनको कैदी नहीं बनाया जाएगा और न उनके माल को मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम किया जाएगा, इसलिए क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने जंग जमल के दौरान फरमाया जब मुकाबले के अंदर हजरत तलहा और हजरत जुबैर और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हुम आए थे, तो जब हजरत जुबैर और हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी कत्ल हो गए और उनको शिकस्त हो गई तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान फरमाया कि किसी कैदी को कत्ल न किया जाए और किसी औरत के पर्दे को न खोला जाए और किसी का माल न लिया जाए। और फिर साहिब हिदायत ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि अगर इमाम को हाजत हो तो बागियों के असलहे वगैरह को भी अपने गाजियों में तकसीम कर सकता है और उसे लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और नीज इमाम जो है इन बागियों के मालों को रोक लेगा और इनको वापस नहीं करेगा यहां तक कि वो तौबा कर लें। जब वो तौबा कर लेंगे तो फिर उनका माल उनको वापस लौटा दिया जाएगा। नीज साहिब हिदायत ने आपको बताया कि अगर बागी किसी इलाके को फतह कर लें और वहां लोगों से खराज और उशर भी वसूल कर लें तो बागियों को शिकस्त देने के बाद इमाम दोबारा उन लोगों से खराज और उशर वसूल नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि इमाम ये जो खराज और उशर वसूल करता है वो इस वजह से कि वो लोगों की हिफाजत करता है। तो जब बागियों ने उस इलाके पर कब्जा कर लिया तो मालूम हुआ इमाम ने उन लोगों की हिफाजत नहीं की। जब हिफाजत नहीं की तो वह उशर और खराज भी वसूल नहीं कर सकता। हां अलबत्ता वह उशर और खराज जो बागियों ने वसूल किया उसके बारे में देखा जाएगा कि बागियों ने उसको जहां शरीयत ने खर्च करने का हुक्म दिया है वहीं खर्च किया है या दूसरी जगह खर्च किया है। अगर बागियों ने उशर और खराज को अपने मसरफ में खर्च किया है तो जिन लोगों से यह वसूल किया गया था उनकी तरफ से यह उशर और खराज अदा हो गया, और अगर बागियों ने अपने मसरफ में खर्च नहीं किया तो फिर इस सूरत के अंदर उनको दयानतन कहा जाएगा कि उनका और अल्लाह का मामला है, उन लोगों को वो दोबारा अदा करना चाहिए। और साहिब हिदायत ने बतलाया कि फुकहा फरमाते हैं मुसलमानों के जो लड़ने वाले हैं वो भी खराज का मसरफ है, लिहाजा अगर बागियों ने खराज को अपने ऊपर लगाया है तो खराज अदा हो गया, और नीज अगर बागी फुकारा हैं और उशर उन्होंने अपने ऊपर लगाया है तो वो उशर का मसरफ है, लिहाजा उशर भी अदा हो गया, दोबारा अदा करने की जरूरत नहीं है भाई। और उसके बाद साहिब हिदायत ने जिनायतों को बयान फरमाया कि अगर कोई बागी बागी को कत्ल कर दे और उसके बाद फिर उन पर गलबा पा लिया जाए तो वहां न किसास आएगा और न दियत आएगी, क्योंकि इमाम को उन पर विलायत हासिल नहीं थी भाई। और अगर बागियों ने किसी शहर पर कब्जा किया और वहां एक आदिल मुसलमान ने यानी गैर बागी ने गैर बागी को कत्ल कर दिया और फिर इमाम ने उस इलाके पर कब्जा कर लिया तो इस सूरत के अंदर फिर वहां किसास और दियत का हुक्म जारी होगा। इस पर इश्काल होता है कि जब बागियों का वहां कब्जा था तो इमाम को विलायत नहीं थी, जब विलायत नहीं थी तो फिर किसास और दियत कैसे आ सकता है वहां पर, तो उसका जवाब दिया था साहिब हिदायत ने कि इसकी तावील यह है कि जब वहां पर बागियों ने अभी अपने अहकाम जारी न किए हों और उससे पहले ही इमाम ने उन पर हमला कर दिया तो ये उस सूरत में है, क्योंकि जब बागियों ने अपने अहकाम अभी जारी नहीं किए तो मालूम हुआ अभी भी इमाम की विलायत वहां मौजूद है, लिहाजा किसास और दियत का हुक्म जारी होगा। इसी तरह अगर मुसलमानों में से किसी मुसलमान ने बागी को कत्ल किया है यानी अपने मोरिस को कत्ल किया है तो फिर भी ये वारिस बनेगा, क्योंकि ये कत्ल जो है वो ना हक नहीं है बल्कि ये कत्ल बहक है भाई, वो हक के साथ कत्ल कर रहा है, लिहाजा वारिस बनेगा। और जबकि इसके मुकाबले में अगर बागी ने मुसलमानों की फौज में से अपने मोरिस को कत्ल किया और फिर मुसलमानों को फतह हो गई और फिर अगर बाद में बागी कहता है कि मैं पहले भी हक पर था और अब भी मैं हक पर हूं तो इस सूरत में इस पर जमान नहीं आएगा भाई। और अगर बागी कहता है कि मुझे पता है कि मैं पहले बातिल पर था तो इस सूरत में फिर जमान और दियत आएगी भाई। इस सिलसिले में हमारी दलील जो है वो सहाबा का इजमा है जिसको इमाम जुहरी रहमहुल्ला ने नकल फरमाया है भाई। और आपको साहिब हिदायत ने बतलाया था कि जो खवारिश थे ये मुसलमानों के खून को हलाल समझते थे और कुरान में तावीले फासिद करते थे, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वमन यासिल्लाह व रसूलहु और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे फइन्ना लहु नार जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा तो उसके लिए जहन्नम की आग है और वो उसमें हमेशा रहेगा। तो वो खवारिज इस आयत से इस्तेदलाल करते थे कि मालूम हो कोई भी शख्स जब कोई गुनाह कर ले चाहे सगीरा हो या कबीरा वो काफिर हो जाता है और वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। तो अगरचे उनकी तावील फासिद थी गलत थी लेकिन बहरहाल वो कुरान से इस्तेदलाल करते थे, लिहाजा इस तावील फासिद जो है इसका भी वही हुक्म होगा जो तावील सही का होता है। तो जो तावील सही यानी जो सही तफसीर का हुक्म होता है जब इसके साथ ताकत भी मिल जाए, मैंने आपको बताया था कि तावील फासिद के साथ जब कुव्वत मिल जाएगी तो फिर इस सूरत में यह दलील बनेगी दफा के लिए, ये दफा के लिए दलील बनेगी किसी हुक्म को दूर करने के लिए कि उस हुक्म को न आने दे। तो ये इस बात की दलील तो नहीं बनेगी, इसके जरिए किसी चीज को साबित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन तावील फासिद के साथ कुव्वत जमा हो जाए तो ये दफाए हुक्म के लिए दलील बन सकती है भाई। चुनांचे इसीलिए अगर कोई शख्स मुर्तद होकर हर्बियों से मिल गया और फिर उन्होंने हमारे साथ जंग की और उस मुर्तद ने मुसलमानों को जानी नुकसान भी पहुंचाया है और माली नुकसान भी पहुंचाया है और फिर बाद में दोबारा मुसलमान हो जाता है तो इस पर जमान नहीं आएगा, क्योंकि इसको कुव्वत भी हासिल थी और इनके तावील भी थी कि मुसलमानों को बातिल पर समझते थे भाई। और इसकी वजह जिक्र की साहिब हिदायत ने कि तावील फासिद के साथ कुव्वत मिल जाए तो यह दफा की दलील इसलिए बनेगी क्योंकि अहकाम इस्लाम के लिए या तो इल्तिजाम चाहिए या इल्जाम। इल्तिजाम का माना कोई शख्स खुद अपने ऊपर अहकाम को लाजिम कर ले, और इल्जाम का माना है कि उस पर खलीफा को विलायत हासिल हो, खलीफा उस पर अहकाम को लाजिम कर दे। तो यहां पर जब इनको कुव्वत हासिल है तो खलीफा को विलायत इल्जाम भी नहीं है, और नीज जब वो तावील फासिद करते हैं तो मालूम हुआ वो इन अहकाम को अपने ऊपर लाजिम भी नहीं कर रहे, तो न इल्जाम है और न इल्तिजाम है, लिहाजा ये दफा की दलील बनेंगे भाई। तो मालूम हुआ कि आदिल जब बागी को कत्ल कर दे तो ये उसने हक के साथ कत्ल किया है, लिहाजा वो वरासत से महरूम नहीं होगा। और साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि बागियों को असलहा बेचना मकरूह है भाई, क्योंकि अगर इनको असलहा बेचा जाएगा ये तो गुनाह पर मुआवनत हो जाएगी जो हराम है भाई। और फिर उसके बाद हमने किताबुल लकीत शुरू की थी। लकीत मैंने आपको बतलाया था कि अगर किसी ने किसी बच्चे को रास्ते में फेंक दिया है फकरो फाके के खौफ से या जिना की तोहमत के खौफ से, तो ये जो बच्चा रास्ते में पड़ा हुआ मिले इसको लकीत कहते हैं, और लकता यलकुतु के माने हैं उठाना, तो ये लकीत बमाने मलकूत के है, जैसे जरीह बमाने मजरूह के है। लकीत का माना होगा उठाया हुआ, तो ये जो बच्चा रास्ते में पड़ा हुआ है तो इसको ही नतीजे और माल के एतबार से लकीत कह दिया गया, क्योंकि बिल आखिर इसको उठाया जाएगा भाई। और साहिब हिदायत ने आपको बतलाया था कि ये लकीत को उठाना मुस्तहब है ताकि उसकी जिंदगी बच जाए, और अगर उसकी हलाकत का खौफ गालिब हो फिर तो उसको उठाना वाजिब है और इसको आजाद शुमार किया जाएगा और इसका नफका बैतुल माल में से अदा किया जाएगा, इसलिए क्योंकि इसकी मीरास जो है वो बैतुल माल में जमा होगी, तो लिहाजा जो इसके नफका है या अगर ये कोई जिनायत कर देता है तो वो भी बैतुल माल से अदा की जाएगी, इसलिए क्योंकि अलगुर्म बिलगुनमी, क्योंकि नुकसान जो है वो नफे के बदले होता है, तो यहां नफा बैतुल माल को है कि उसमें इसकी मीरास आएगी तो लिहाजा खर्चा भी बैतुल माल के जिम्मे होगा। और साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि जिस शख्स को यह बच्चा मिला है वो उसके हिफाजत का ज्यादा हकदार है, लिहाजा कोई और उससे जबरन इस बच्चे को नहीं ले सकता, और अगर कोई शख्स दावा कर दे इस बच्चे के नसब का तो उसका दावा साबित हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बच्चे को नसब की शदीद हाजत है, और अगर दो अफराद ने बच्चे के नसब का दावा किया तो जिसका दावा मुकद्दम है उससे नसब साबित हो जाएगा, और अगर दोनों ने इकट्ठा दावा किया है या दोनों ने अलग अलग मजलिस में दावा किया है और तकदीम ताखीर का पता नहीं चल सकता तो इसको भी इकट्ठा ही शुमार किया जाएगा, और वहां तरजीह की कोई सूरत भी मौजूद नहीं है तो फिर दोनों से बच्चे का नसब साबित हो जाएगा। लेकिन अगर तरजीह की सूरत मौजूद है, मसलन उन दोनों अफराद में से एक आजाद है और एक गुलाम है, तो आजाद को तरजीह होगी उससे बच्चे का नसब साबित हो जाएगा, या वो दोनों दावा करने वालों में से एक मुसलमान है और दूसरा जिम्मी है तो मुसलमान को तरजीह होगी, मुसलमान से उस बच्चे का नसब साबित हो जाएगा भाई। और फिर साहिब हिदायत ने बतलाया कि अगर मुसलमानों के इलाके के अंदर किसी मुसलमान को लकीत मिलता है तो यह बच्चा मुसलमान शुमार होगा, और अगर जिम्मी ने इसके नसब का दावा कर दिया तो नसब तो साबित हो जाएगा, अलबत्ता बच्चा मुसलमान ही शुमार होगा। कियास पे ये तकाजा करता है कि ये नसब साबित नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें बच्चे का नुकसान है इसका वो इस्लाम जो दारुल इस्लाम की वजह से साबित हो रहा है उसको बातिल करार देना पड़ेगा। लिहाजा जिम्मी से नसब साबित ही नहीं होना चाहिए, लेकिन इस्तेहसानन जो है नसब साबित हो जाएगा, अलबत्ता बच्चा मुसलमान ही शुमार होगा। वजह यह कि यहां दो चीजें हैं, जिम्मी के दावे के अंदर एक तो बच्चे को नसब मिल जाएगा और इसमें बच्चे का फायदा है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो इस दावे की वजह से उस बच्चे के इस्लाम को बातिल करार देना पड़ेगा और इसमें बच्चे का नुकसान है। लिहाजा जिस चीज में बच्चे का फायदा है उसका एतबार किया जाएगा और जिस चीज में बच्चे का नुकसान है उसका एतबार नहीं किया जाएगा। तो जिम्मी से नसब तो साबित हो जाएगा, अलबत्ता बच्चा मुसलमान ही शुमार होगा। और अगर इसके मुकाबले में अगर जिम्मियों की बस्ती में या उनकी इबादतगाह के अंदर जिम्मी को कोई बच्चा मिला है तो वह बच्चा जिम्मी ही शुमार होगा। और अगर बच्चे को पाने वाला तो मुसलमान है लेकिन वो जिम्मियों के इलाके में बच्चा मिला है या जिम्मियों के इबादतगाह के अंदर बच्चा मिला है, या इसका बरअक्स है कि बच्चा तो मुसलमानों के इलाके में मिला है लेकिन उसको पाने वाला कोई जिम्मी है, तो इस बारे में कहते हैं कि रिवायात मुख्तलिफ हैं। बाज रिवायात से पता चलता है कि इसके अंदर जगह का एतबार है क्योंकि जगह मुकदम है पाने वाले पर, लिहाजा जगह का एतबार है। यानी मुसलमानों की जगह में मिला है तो मुसलमान शुमार होगा, जिम्मियों की जगह में मिला है तो जिम्मी शुमार होगा। जबकि बाज रिवायात से पता चलता है कि उस बच्चे को पाने वाले शख्स का एतबार है, अगर वो शख्स मुसलमान है तो बच्चा मुसलमान शुमार होगा चाहे जिम्मियों के इलाके में ही क्यों ना मिला हो, और अगर पाने वाला जिम्मी है तो बच्चा जिम्मी ही शुमार होगा चाहे मुसलमानों के इलाके में ही क्यों ना मिला हो। और बाज रिवायात से पता चलता है कि इस्लाम का एतबार है क्योंकि इस्लाम के अंदर बच्चे का नफा है, लिहाजा हर हाल में बच्चे को मुसलमान ही शुमार किया जाएगा। और अगर किसी ने दावा कर दिया कि ये लकीत मेरा गुलाम है तो इस सूरत के अंदर बगैर बयीना के उसके दावे को कबूल नहीं किया जाएगा। और अगर किसी गुलाम ने दावा कर दिया कि लकीत जो है मेरा बेटा है, मेरी औलाद है, तो इस सूरत के अंदर नसब तो साबित हो जाएगा क्योंकि लकीत को नसब की शदीद हाजत है, वरना तो ये उसकी सारी जिंदगी के लिए ताने का बाइस बनेगा कि लोग उसे ताना देंगे कि तुम्हारे तो बाप का ही पता नहीं है। तो लिहाजा अगर गुलाम भी दावा नसब का करे तो वो लकीत का नसब साबित हो जाएगा, अलबत्ता बच्चा जो है वो आजाद ही शुमार होगा। इसलिए क्योंकि गुलाम का बच्चा आजाद भी हो सकता है और गुलाम भी, अगर गुलाम की बीवी आजाद है तो उसके बच्चे आजाद शुमार होंगे, अगर गुलाम की बीवी बांदी है तो वो बच्चे गुलाम और बांदियां शुमार होंगे। तो लिहाजा इस बच्चे का नसब तो गुलाम से साबित हो गया लेकिन इसके आजाद और गुलाम होने में शक आ गया और शुबा आ गया, तो लिहाजा शक और शुबे की वजह से इसकी गुलामी साबित नहीं होगी क्योंकि असल जो है हर एक के अंदर वो आजादी है, गुलामी किसी आरिस की वजह से पेश आती है भाई। और यह भी साहिब हिदाया ने बतलाया कि अगर लकीत के साथ कोई माल बंधा हुआ मिला है या जिस सवारी पर लकीत मिला है उसके साथ माल बंधा हुआ था तो यह लकीत ही का माल शुमार होगा। और फिर क्या वो इस लकीत को पाने वाला शख्स क्या इस माल को लकीत पर खर्च कर सकता है या नहीं, तो बास फुकहा फरमाते हैं कि काजी की इजाजत के बगैर भी वो खर्च कर सकता है, जबकि बास फुकहा फरमाते हैं कि नहीं, यहां काजी की इजाजत जरूरी है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि मुल्तकिद जो है उसको इस बात की विलायत नहीं है कि वो इस लकीत का निकाह करवा दे, उसका निकाह करवाने की विलायत हासिल नहीं, इसलिए क्योंकि निकाह की विलायत या तो रिश्तेदारी की वजह से हासिल होती है या मालिक को हासिल होती है कि वो जिसका निकाह करवा रहा है वो उसका ममलूक है, या बादशाह को हासिल होती है कि वो नाबालिग जो है उसका कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है तो बादशाह को विलायत हासिल होती है, लेकिन यहां मुल्तकिद के अंदर कोई एक सबब भी नहीं पाया जा रहा विलायत निकाह का, ना तो वो इस लकीत का करीबी रिश्तेदार है, ना वो इसका मालिक है और ना बादशाह और हाकिम है भाई। और इसी तरह ये जो मुल्तकित है इसको लकीत के माल के अंदर तसरुफ का हक भी नहीं है, इसलिए क्योंकि नाबालिग के माल में जो तसरुफ का हक शरीयत देती है वो माल को बढ़ाने के लिए वो हक दिया जाता है, और माल को बढ़ाने के लिए शफकत भी कामिल चाहिए और अकल भी कामिल चाहिए। तो लकीत के अंदर अकल तो कामिल है लेकिन शफकत कामिल नहीं क्योंकि उसका बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है, लिहाजा उसको ये विलायत हासिल नहीं होगी भाई। अलबत्ता वो बच्चे के लिए तोहफे वगैरह पर कब्जा कर सकता है क्योंकि उसके अंदर बच्चे का नफा ही नफा है, कोई नुकसान नहीं। और नीज ये शख्स जो है इस बच्चे को कारीगरी वगैरह के अंदर भी दे सकता है कि बच्चा कोई कारीगरी सीख ले, अलबत्ता इजारे के तौर पर यह बच्चे को नहीं दे सकता किसी को, इसलिए क्योंकि मुल्तकित जो है वह खुद बच्चे से खिदमत नहीं ले सकता, तो इवज लेकर दूसरे को भी इस खिदमत का मालिक नहीं बना सकता। भाई बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। किताबुल लुक्तति قال اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها। किताब लुकता भाई, लुकता भाई रास्ते में पड़ी हुई जो चीज मिले उसको लुकता कहते हैं, रास्ते में पड़ा हुआ बच्चा मिले उसको लकीत कहते हैं, और कोई और चीज कोई और माल रास्ते में पड़ा हुआ मिले तो उसको लुकता कहते हैं। और याद रखो लुकता के अंदर ये काफ पर सुकून भी सही है और इस पर फतहा भी सही है, लुकता भी और लुकाता भी भाई, लुकता भी और लुकाता भी भाई, तो दोनों तरह पढ़ना सही है भाई। तो लुकता किसे कहते हैं? रास्ते में पड़ा हुआ जो माल मिले उसको लुकाता कहते हैं भाई। किताब उल्लुकतती, ये किताब है लुकता के बयान में। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, अल्लुकतु अमानतुन इदा अशहद अल्मुल्तकितु अन्नहु यखुदुहा लियहफजहा वयरुद्दहा अला साहिबिहा। भाई देखिए, रास्ते में एक चीज पड़ी हुई मिली, एक शख्स उसको उठाता है, तो उसमें दोनों एहतमाल हैं। हो सकता है ये चीज मालिक के लिए उठा रहा हो कि मैं इसको पहुंचा दूंगा, और जब वो मालिक को देने के लिए उठा रहा है तो इस चीज का हुक्म अमानत वाला होगा, तो ये अमानत के हुक्म में है। और इसमें ये भी एहतमाल है कि हो सकता है ये उठाने वाला अपने लिए उठा रहा हो कि ये तो मुझे चीज मिल गई, ये तो मेरी हो गई, तो इस सूरत में ये गासिब के दर्जे में होगा। तो अगर मालिक को देने के लिए चीज को उठाया है तो चीज अमानत के दर्जे में है, और आप जानते हैं अमानत अगर उस अमानतदार के पास हलाक हो जाए तो फिर उसका जमान नहीं आता भाई। तो लिहाजा अगर इसे मालिक को देने की नीयत से वो चीज उठाई है और इसके पास हलाक हो गई तो इस पर जमान नहीं आएगा, लेकिन अगर यह चीज इसने अपने लिए उठाई है और इसके पास वो चीज हलाक हो गई तो इस पर जमान आएगा, इसको जमान देना पड़ेगा भाई। तो लिहाजा अब पता कैसे चलेगा यह चीज इसने अपने लिए उठाई है या मालिक को पहुंचाने के लिए? तो फुकहा फरमाते हैं कि अगर इसने मालिक को यह चीज पहुंचाने के लिए उठाई है तो इसको चाहिए कि इस पर गवाह बना ले, चीज उठाते हुए क्या कर ले, गवाह बना ले, यानी वहां लोगों को कह दे कि एक चीज मुझे मिली है, अगर कोई आदमी इस चीज को तलाश करता हुआ मिले तो मेरी तरफ उसको भेज देना। तवज्जो है, तो लोगों को उस पर गवाह बना दिया कि मुझे एक चीज मिली है, तो इससे पता चल जाएगा कि मालूम हुआ ये इसका इरादा मालिक तक पहुंचाने का है भाई। और अगर इसने गवाह नहीं बनाए तो फिर मालूम हुआ इसका इरादा मालिक तक पहुंचाने का नहीं है, लिहाजा इस सूरत में अगर वो चीज इसके पास हलाक हो गई तो इसको जमान देना पड़ेगा। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं, अल्लुक्ततु अमानतुन, के लुक्ता जो है वो अमानत है, इदा अशहद अल्मुल्तकितु, जब मुल्तकित ने गवाह बना लिए, एक है शहीदा या अशहदु मुजर्रद से, इसका माना है गवाह बनना, और एक है अशहद युशिदु इशहादन, इसका माना है दूसरे को गवाह बनाना। तो कहते हैं लुक्ता जो है अमानत है, कब है लुक्ता अमानत? इजा अशहद अल्मुल्तकितु, जब मुल्तकित ने गवाह बना लिए कि अन्नहु यखुदुहा लियहफजहा, कि उसने ये चीज उठाई है ताकि वो इसकी हिफाजत करे, वयरुद्दहा अला साहिबिहा, और उसके मालिक को वापस लौटा दे, जब इस पर वो गवाह बना ले तो फिर ये लुक्ता अमानत है भाई। लिअन्न अल-अख्ज़ अला हाज़ल वज्ही, इसलिए क्योंकि इस तरीके पर उठाना यानी गवाह बनाकर चीज को उठाना, माजूनुन फी ही शरअन, शरअन इसकी इजाजत है, शरअन ये माजून फी है, शरअन इसकी इजाजत दी गई है। चुनाचे हदीस में आता है, हदीस ये हाशिये में दी हुई है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन असाब लुक्ततन, कि जिस शख्स को कोई लुक्ता मिले, फल युशहिद ज़वाय अदलिन, तो उसको चाहिए कि दो आदिल आदमियों को गवाह बना ले। जिस शख्स को कोई लुकता मिले उसे चाहिए कि दो आदिल आदमियों को गवाह बना ले। मालूम हुआ इस तरीके पर उठाना यानी गवाह बनाकर ताकि पता चल जाए मालिक तक पहुंचाना चाहता है, इस तरीके पर लुकते को उठाने की शरअन इजाजत है भाई। क्यों कहते हैं ली अन्नल अख्ज़ा अला हाज़ल वजही, इसलिए क्योंकि इस तरीके पर उठाना लुकते को यानी गवाह बनाकर माजून फी ही शरअन, ये शरअन माजून फी है यानी शरअन इसकी इजाज़त है। बल हुवल अफजल इंद आम्मतिल उलमाई, बल्कि ये अफजल है अक्सर उलमा के नजदीक। एक है कि उस चीज को वहीं पड़ा रहने दे और एक है कि उस चीज को उठा ले मालिक तक पहुंचाने के लिए। तो उलमा फरमाते हैं कि इसका उठाना अफजल है, इसका उठाना अफजल है बजाय इसके कि उस चीज को वहीं रहने दे। तो कहते हैं बल हुवल अफजल इंद आम्मतिल उलमाई, बल्कि ये अफजल है अक्सर उलमा के नजदीक। वहुवल वाजिबु इदा खाफ अज़्ज़िया अला मा कालू, और अगर उस चीज के जाया होने का खौफ है तो फिर इस सूरत के अंदर उसका उठाना वाजिब है भाई। कहते हैं वह हुवल वाजिबू, और ये उठाना वाजिब है। इदा खाफ ज़याया, जब उस चीज के जाया होने का खौफ हो। अला मा कालू, उस वजह से जो फुकहा ने फरमाया है। वह इदा काना कज़ालिका, और जब मामला ऐसा है, जब मामला ऐसा है यानी जब गवाह बनाने से लुकता अमानत के हुक्म में हो जाता है भाई। मतन में आया ना अल्लुकता तु अमानतुन इजा अशहद अल मुल्तकी तु, जब मामला ऐसा ही है कि गवाह बनाने से लुकता किसके हुक्म में हो जाता है, अमानत के हुक्म में हो जाता है। तो कहते हैं वह इदा का नकालिका, और जब मामला ऐसा है ला तकून मजमून तन अलैही, तो ये लुकता जो है उस उठाने वाले पर मजमून नहीं होगा यानी उस पर इसका जमान नहीं आएगा, क्योंकि अमानत का जमान नहीं आता जब उसके अंदर कोई तादी और ज्यादती न हो गई। व कदालिका इदा तसादका अन्नहु अखदहा लिल मालिक, भाई एक शख्स ने एक चीज उठाई थी लेकिन उसने गवाह नहीं बनाए और फिर बाद में अलबत्ता जब वो असल मालिक आया तो ये भी कहता है मैंने मालिक को देने के लिए उठाई थी, और असल मालिक जो है वो भी इसकी तस्दीक कर रहा है कि हां इसने मुझे पहुंचाने के लिए ही चीज उठाई थी। तो याद रखो इस सूरत के अंदर बेशक इसके पास वो चीज हलाक हो गई है फिर भी इस पर जमान नहीं आएगा। जब हम दोनों एक दूसरे की तस्दीक कर रहे हैं, ये उठाने वाला भी कह रहा है मैंने मालिक के लिए उठाई थी और मालिक भी कह रहा है कि हां ये नेक आदमी है, तबलीगी आदमी है भाई, इसने बाकी मुझ तक पहुंचाने के लिए ये चीज उठाई थी, तो याद रखो इस सूरत के अंदर भी जमान नहीं आएगा, वो चीज चाहे इसके पास हलाक ही क्यों ना हो जाए। वजह यह कि इन दोनों का मामला है, जैसे गवाही के जरिए एक चीज साबित हो जाती है तो दोनों का एक दूसरे की तस्दीक करना यह भी किसके दर्जे में हो गया, गवाही के दर्जे में हो गया, लिहाजा इसकी वजह से भी अब जमान नहीं आएगा। यह माना है वह कदालिका इदा तसादका, और इसी तरह होगा यानी जमान नहीं आएगा जब वो दोनों एक दूसरे की तस्दीक करें कि अन्नहु अखदहा लिल मालिकी, कि उसने ये लुकता उठाया था मालिक के लिए। लि अन्न तसादुकहुमा हुज्जतुन फी हक्किहिमा, इसलिए क्योंकि इनका बाहम एक दूसरे की तस्दीक करना इनके अपने हक में हुज्जत है, दलील है। फसार कल बय्यिनती, तो ये भी बय्यिना की तरह ही हो गया। वलौ अकर अन्नहु अखदहु लिनफ्सिही, और अगर उसने इकरार किया कि उसने ये चीज अपने लिए उठाई थी, यज़मनु बिल इजमाई, तो बिल इत्तेफाक वो जामिन होगा। बिल इजमा यानी हमारे तीनों अइमा के नजदीक वो शख्स जो है वो जामिन होगा भाई। भाई अगर वो इकरार करता है कि ये चीज मैंने अपने लिए उठाई थी तो हमारे तीनों अइमा के नजदीक यह शख्स जामिन होगा, ये शख्स जामिन होगा। ये एहतराज है उस सूरत में जब इसने एक चीज उठाई है लेकिन गवाह नहीं बनाए। तो याद रखो आगे इख्तिलाफ जिक्र करेंगे साहिब हिदाया, तरफैन फरमाते हैं गवाह इसने नहीं बनाए, मालूम हो इसने चीज अपने लिए उठाई थी। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस सूरत में भी जमान नहीं आएगा जब यह कह रहा है कि मैंने मालिक के लिए उठाई थी। तो कहते हैं वलौ अकर्रा अन्नहु अखदहु लिनफ्सिही, और अगर उस लुकते को उठाने वाले ने इकरार कर लिया कि लुकता उसने अपने लिए उठाया था, यज़मनु बिल इजमाई, तो बिल इत्तेफाक वो जामिन होगा। बिल इजमा से क्या मुराद है, हमारे तीनों अइमा का इत्तेफाक मुराद है। तो बिल इतफाक जामिन होगा, लिअन्नहु अखदा माल गैरिही, इसलिए क्योंकि इसने गैर का माल उठाया था, बिगैरी इज्नही, बगैर उस माल वाले की इजाजत के, व बिगैरी इज्नि शरई, और बगैर शरीयत की इजाजत के। इसने गैर का माल उठाया है, गैर की तरफ से भी इसको माल उठाने की इजाजत नहीं थी और शरीयत की तरफ से भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि शरीयत की तरफ से उठाने की इजाजत उस वक्त है जब वो मालिक तक पहुंचाने के इरादे से उठाता है और फिर उस पर गवाह भी बना लेता है। तो लिहाजा यहां पर जब इसने अपने लिए उठाई है तो न इस माल के मालिक की तरफ से उठाने की इजाजत है, न शरीयत की तरफ से इजाजत है, तो इस सूरत के अंदर यह गासिब के दर्जे में हो गया। ये शख्स किसके दर्जे में हुआ? गासिब के दर्जे में हुआ। गासिब जो किसी की चीज पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, और गासिब पर तो जमान आया करता है, लिहाजा इस आदमी पर भी जमान आएगा। यह माना है लिअन्नहु अखदा माल गैरिही बिगैरी इज्निही व बिगैरी इज्नि शरई, इसलिए क्योंकि इसने किसी दूसरे का माल उठाया है उसकी इजाजत के बगैर और शरीयत की इजाजत के बगैर, तो यह गासिब हुआ। और याद रखना भाई, यहां पर जिक्र चल रहा है लुकता का भाई, और लुकता के आखिर में गोलता है भाई, तो लिहाजा इसकी तरफ मुअन्नस की जमीर राजिया करेंगे, लेकिन बहुत सी जगह मुजक्कर जमीर भी इसकी तरफ राजिया कर देंगे साहिब हिदाया। तवज्जो है, तो उसमें तावील करते हैं कि ये मजकूर उनकी तावील में, मजकूर का लफ्ज देखो मुजक्कर है, वो जिसको जिक्र कर दिया गया, और ज्यादा बेहतर इसके अंदर तावील यह है कि वो लुकता वो माल है और माल का लफ्ज़ तो मुजक्कर है, तो इस माल की तावील में उसकी तरफ वाहिद मुजक्कर की जमीर भी राजे करेंगे, और जगह जगह इस तरह होगा। तो आपने परेशान नहीं होना कि जिक्र लुकता का हो रहा है और मुजक्कर जमीरें उसकी तरफ लौटाई जा रही हैं। आगे देखिए, वह इल्लम युशहिदी शुहूदा अलैही, और अगर उठाने वाले ने उस पर गवाह नहीं बनाए, वकाल अल आखिज़ू, और उठाने वाला कहता है अखस्तुहु लिल मालिकी, कि ये लुकता मैंने मालिक के लिए उठाया था, वकज़्ज़बहुल मालिक, और मालिक उसको झुटलाता है, तो यज़मनु इंदा अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाहु ताला, तो तरफैन रहिमहुमल्लाह के नजदीक ये जामिन होगा। इसने गवाह नहीं बनाए और मालिक इसको झुटला रहा है, तो ये इस पर जमान आएगा तरफैन के नजदीक। वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्लाहु ताला ला यज़मनु, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये जामिन नहीं होगा। वल कौलु कौलुहु, और वो कौल जिसका एतबार किया जाएगा वो इस उठाने वाले का कौल है, ये जो चीज को उठाने वाला है इसका कौल मोतबर है। वजह यह कि मालिक इस पर जमान का दावा कर रहा है, जब वो मालिक कह रहा है कि इसने अपने लिए उठाई है, मालूम हुआ वो इस पर जमान का दावा कर रहा है, और ये उठाने वाला उस जमान का इनकार कर रहा है, और आप जानते हैं अलबैनत अलल मुद्दई वल यमीन अला मन अनकारा, तो लिहाजा मालिक के पास तो बैना है नहीं, लिहाजा मुनकिर का कौल यानी उस चीज को उठाने वाले का कौल मोतबर होगा कसम के साथ भाई। तो कहते हैं वल कौलु कौलुहू, और वो कौल जिसका एतबार किया जाएगा वो इस उठाने वाले का कौल है। लिअन्न ज़ाहिर शाहिदुन लहू, भाई इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि इस उठाने वाले पर जमान नहीं आएगा और इसी का कौल मोतबर है। लिअन्न ज़ाहिर शाहिदुन लहू, इसलिए क्योंकि जाहिर इसका गवाह है, जाहिर इसका गवाह है, इसलिए क्योंकि आप पढ़ चुके हैं मुसलमान के फेल में एक खैर वाला पहलू हो और एक गुनाह वाला पहलू हो, तो खैर वाले पहलू पर उसको महमूल किया जाता है। तो यहां पर भी उसने उस चीज को उठाया है, तो अगर मालिक तक पहुंचाने के लिए उठाया है तो इसमें अजर और सवाब है, और अगर अपने लिए उठाया है तो यह मासियत और गुनाह है, और मुसलमान के फेल को खैर पर महमूल किया जाता है, तो जाहिर इसी की ताइद कर रहा है क्योंकि उठाने वाला मुसलमान है भाई। तो कहते हैं लिअन्न ज़ाहिर शाहिदुन लहू, इसलिए क्योंकि जाहिर इस उठाने वाले का गवाह है। लिख्तियारिहिल हिस्बता दूनल मासियती, हिस्बा कहते हैं अजर व सवाब के तौर पर, लिख्तियारिहिल हिस्बता दूनल मासियती, इस वजह से कि यह अजर व सवाब को इख्तियार करेगा ना कि गुनाह को। वलहुमा, अब तरफैन की दलील आ गई, तरफैन फरमाते हैं गवाह नहीं बनाए तो इस पर जमान आएगा। कहते हैं वलहुमा, तरफैन की दलील यह है कि अन्नहु अकर्र बिसबबि ज़मानी, भाई देखिए तरफैन फरमाते हैं कि इसने इकरार कर लिया है कि यह मैंने उठाया है, और किसी की चीज उठाना यह जमान का सबब है, इसने जमान के सबब का तो इकरार कर लिया है, आप वो ऐसी चीज का दावा कर रहा है जिसकी वजह से वो बरी हो जाए, उस पर सामान ना आए कि मैंने मालिक के लिए उठाया था, तो अब मालूम नहीं इसने मालिक के लिए उठाया है या नहीं, तो मालिक के इसलिए उठाने में शक आ गया, क्योंकि हो सकता है इसने अपने लिए उठाया हो, तो मालिक के लिए उठाने में शक आ गया, तो लिहाजा शक की वजह से यह जमान से बरी नहीं होगा भाई। तो कहते हैं वल्लाहु मा तरफैन की दलील यह है, अन्नहु अकर्र बिसबब ज़मानी, कि इसने जमान के सबब का इकरार कर लिया है, वह हुआ अख्ज़ु मालिल गैरी, और जमान का सबब क्या है, कहते हैं वह हुआ अख्ज़ु मालिल गैरी, और वह गैर के माल को लेना है उसकी इजाजत के बगैर, वह दा मायुब्रीउहू, और इसने दावा किया है उस चीज का जो इसको बरी कर दे, जो इसको बरी उस जिम्मा करार दे दे, वह हुवल अख्ज़ु लिमालिकी ही, और वह मालिक के लिए उठाना है, यानी ये इसका दावा कर रहा है, वफी ही वका शक, और इसके अंदर शक वाके हो गया कि पता नहीं इसे मालिक के लिए उठाया है या अपने लिए उठाया है, फला या बरा उलिहादा, ये बरी उस जिम्मा नहीं होगा, इसको जमान देना पड़ेगा। वह माजा करा मीना जाहिरी यू आरिजू मिसलुहू, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि जाहिर हाल जो है वो इसकी ताईद कर रहा है, क्योंकि उठाने वाला मुसलमान है और मुसलमान के फेल को खैर पर महमूल किया जाता है, तो उसका जवाब दे रहे हैं अगर एक जाहिर उस उठाने वाले की ताईद कर रहा है तो एक जाहिर इसके मुआरिज और मुकाबिल भी है, और वो ये कि आदमी जो भी फेल और तसरुफ करता है वो अपने लिए करता है, तो एक जाहिर अगर उसकी ताईद कर रहा है तो दूसरा जाहिर उसके मुआरिज भी है कि मालूम हुआ ये अपने लिए उठा रहा है। कहते हैं वमादा करा मीना जाहिरी, और वो जाहिर जो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया, यू आरिजुहू मिसलुहू, उसके मुआरिज और मुकाबिल है उसी के मिसल, यानी दूसरा जाहिर, दूसरा जाहिर उसके मुकाबिल है, लिअन्ना ज़ाहिर अन यकूनल मुतसर्रिफ आमिलन लिनफ्सिही, इसलिए क्योंकि जाहिर यही है कि तसरुफ करने वाला अपने लिए अमल करने वाला होता है, वह यकफी ही फिल इशहादि अन यकूला, यहां से अब बतला रहे हैं कि दूसरों को गवाह किस तरह बनाएगा, क्या उनको पूरी तफसील बयान करे कि ये चीज मुझे मिली है, कहते हैं नहीं, तफसील बयान करने की हाजत नहीं, बस इतना बता दे कि मुझे कोई चीज मिली है, अगर कोई आदमी गुमशुदा चीज तलाश करता हुआ मिले तो उस मेरी तरफ उसको भेज देना, यानी तायीन जरूरी नहीं है उस चीज की। कहते हैं वयकफी ही फिल इशहादी, और काफी है उस उठाने वाले के लिए गवाह बनाने के अंदर कि अन यकूल, के वो यूं कहे, मन समीअतुमूहु युनशिदु लुकततन, मन समीअतुमूहु, जिसको तुम लोग सुनो, युनशिदु लुकततन, के वो ऐलान कर रहा है लुकते का, अनशदा युनशिदु का एक माना है तशहीर करना, ऐलान करना गुमशुदा चीज का, तो वो कहे मन समी तुमूहू, कि जिसको तुम लोग सुनो, युनशिदु लुकततन, कि वो लुकते का ऐलान कर रहा है, फदुल्लुहु अलैया, तो उसकी रहनुमाई करना मुझ पर, यानी मेरी तरफ, वाहिदतन कानतिल लुकततु औ अक्सरा, चाहे लुकता एक हो या ज्यादा हो, लिअन्नहु उस्मु जिन्सिन, क्योंकि वो इसमें जिन्स है, यानी लुकता चाहे एक हो या कई किस्म का हो, कई जिन्से हो, फिर भी लुकता का लफ्ज कहना काफी है, कि कोई भी शख्स अगर लुकता का ऐलान कर रहा है, किसी की कोई चीज गिर गई है तो फिर मेरी तरफ भेज देना, तो लुकता इसमें जिन्स है वो सबको शामिल है, यानी तायीन वगैरह और तफसील बयान करने की जरूरत नहीं है भाई। आगे देखिए, काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, फ इन कानत अकल्ल मिन अशरति दराहिम अर्रफहा अय्यामा, भाई यहां तारीफ का जिक्र आएगा, तारीफ का माना है तशहीर करना, मशहूर कराना, यानी ऐलान करवाएगा वो जो चीज को उठाने वाला है, वो ऐलान करवाएगा, उसकी तशहीर करवाएगा, अब कितने दिन उसकी तशहीर करवाए तो आपको बतलाएंगे, वो उस चीज की मालियत के एतबार से है, अगर ज्यादा माल है तो फिर वो ज्यादा अरसे तक उसकी तशहीर करवाए, अगर थोड़ा माल है तो थोड़ी मुद्दत तक उसकी तशहीर करवाए। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, फइन कानत अकल्ल मिन अशरति दराहिमा, अगर वो लुकता जो है 10 दिरहम से कम है, अर्रफहा अय्यामन, तो उसकी तशहीर करवाए चंद दिन, वह इन कानत अशरतन फसाइदन, और अगर वो लुकता 10 दिरहम या ज्यादा का है, अर्रफहा हौलन, तो एक साल उसकी तशहीर करे, हौल साल को कहते हैं, तवज्जो है, एक साल तक उसकी तशहीर करे, इसका यह माना नहीं हर रोज ऐलान करता रहेगा, नहीं, कुछ वक्त के बाद, फिर कुछ वक्त के बाद ऐलान वगैरह करवाता रहे ताकि मालिक तक खबर पहुंच जाए भाई। तो कहते हैं अर्रफहा हौलन, तो एक साल तक उसकी तशहीर करवाए। काल अल अब्दुज़ईफ, इससे मुराद साहिब हिदाया है। काल अल अब्दुज़ईफ, अल्लाह का कमजोर बंदा कहता है, वहां दही रिवायतुन अन अबी हनीफा रहिमहुल्ला, और ये रिवायत है इमाम साहिब से। ये जो मतन में आया, अगर वो लुकता 10 दिरहम से कम है तो चंद दिन तशहीर करवाए, और 10 दिरहम से ज्यादा है तो एक साल तक तशहीर करवाए। ये इमाम साहिब की रिवायत है भाई। तो कहते हैं वहादही रिवायतुन अन अबी हनीफा रहमला, और ये एक रिवायत है इमाम साहिब से। नी साहिब हिदायत ने इशारा फरमा दिया कि यह जाहिर रिवायत नहीं है। वहाजी रिवायतुन अन अबी हनीफा तरहमला, ये एक रिवायत है इमाम साहिब से जो साहिब कुदूरी ने मतन में जिक्र की, जाहिर रिवायत ये नहीं है भाई। जाहिर रिवायत उलमा फरमाते हैं वो ये है कि एक साल तक उसकी तशहीर करवाए भाई। जाहिर रिवायत ये है कि एक साल तक तशहीर करवाए। तो कहते हैं ये एक रिवायत है इमाम साहिब से। व कौलुहू अय्यामन, और ऊपर साहिब कुदूरी का जो कौल आया अय्यामन, अगर 10 दिरहम से कम है तो चंद अय्याम तक उसकी तशहीर करवाए। कहते हैं ये जो अय्यामन का लफ्ज आया साहिब कुदूरी का, माना हु अला हसबी मा यरल इमामु, कि उसी के बकदर जितनी इमाम साहिब की राय है, इमाम साहिब की राय है। यह हाशिए में दिया हुआ है। इमाम साहब फरमाते हैं कि अगर लुकता 200 दिरहम या इससे ज्यादा कीमत वाला है तो फिर एक साल तक उसकी तशहीर करवाएगा, और अगर 10 दिरहम या 10 से ज्यादा दिरहम हैं तो फिर एक महीने तक तशहीर करवाएगा, और अगर 3 दिरहम या 3 से ज्यादा हैं तो फिर 10 दिन तक तशहीर करवाए। 200 दिरहम या ज्यादा हो तो एक साल, 10 दिरहम या 10 से ज्यादा है लेकिन 200 से कम है तो फिर एक महीना तशहीर करवाए, और अगर 3 दिरहम या 3 से ज्यादा है लेकिन 10 से कम है तो फिर 10 दिन तक तशहीर करवाएगा, और अगर 1 दिरहम या 2 दिरहम है तो फिर 3 दिन तक तशहीर करवा ले, और अगर दिरहम से भी कम है तो 1 दिन तशहीर करवा ले, 1 दिन, और भी ज्यादा काम है तो फिर कहते हैं वो चीज उठाए, दाएं बाएं देखे, अगर कोई तलाश करता हुआ नजर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो वहीं पर फकीर को दे दे, सदका कर दे मालिक की तरफ से भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं फिर देख लीजिए, قال العبد الضعيف وهذه روايه عن ابي حنيفه رحمه الله, साहिब हिदाया फरमाते हैं जो मतन के अंदर आया ये इमाम साहिब की एक रिवायत है। وقوله اياما, और साहिब कुदूरी का ये जो قول اياما आया, معناه معنى इसका ये है, على حسب ما يرى الامام, उसी के बकदर जितनी इमाम साहिब की राय है। وقدره محمد رحمه الله تعالى في الاصل بالحول, और वक़्त दारा हो, और इसका अंदाजा लगाया है, ये यूं कहें इसको मुकर्रर किया है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने, फिल असली असल यानी मबसूत के अंदर। मैंने आपको बताया कद्दरा युकद्दिरु तकदीर का माना अंदाजा लगाना भी, और इसका माना मुकर्रर करना भी। तो कहते हैं वक़्त दारा हो मोहम्मद रहमतुल्लाह, और इसको मुकर्रर किया है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने, फिल असली यानी मबसूत के अंदर, बिल हौली एक साल के साथ, इसका अंदाजा लगाया है एक साल के साथ, कि एक साल तशहीर करेगा। मिन गैर तफसील इन बैन अल कलील वल कसीरी, बगैर कोई तफसील किए कलील और कसीर में, कलील और कसीर में फर्क किए बगैर ही, मुतलकन जो भी लुकता हो उसमें एक साल तशहीर करवाई जाएगी। ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया है मबसूत में। वह हुआ कौल मालिक व शाफी रहमहुमल्लाह, और यही कौल है इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमहुमल्लाह का भी, लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम, बवजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने मुबारक के, कि आपने फरमाया है, मनिल तकता शैअन फलयुअर्रिफ हुसनतन, मनिल तकता शैअन, जिसने कोई चीज जमीन से उठाई, फल युअर्रिफ हुसनतन, तो चाहिए कि वो उसकी तशहीर करवाए एक साल तक। तो ये हदीस है। आगे साहिब हिदायत फरमाते हैं, मिन गैर फसलिन, बगैर किसी फर्क के, यानी इस हदीस के अंदर कसीर और कलील माल में कोई फर्क नहीं किया गया, एक साल की मुद्दत जिक्र है भाई। वजहुल अव्वली, अब पहले कौल की वजह, वो जो मतन में आया था ऊपर जो मतन में आया था भाई फइन कानत अकल्ल मिन अशरति दराहिमा अर्रफहा अय्यामन, दस दिरहम से कम है तो चंद दिन, व इन कानत अशरतन फसाइदन अर्रफहा हौलन, और अगर दस दिरहम या दस दिरहम से ज्यादा है तो फिर एक साल तशहीर करवाए। अब उसकी वजह जिक्र करने लगे हैं, वजहुल अव्वली, आपको बतलाएंगे कि ये जो हदीस में एक साल का जिक्र आया है ये उस लुक्ता के बारे में है जो 100 दीनार था भाई, यानी 100 अशरफियां थी सोने की भाई, और दीनार तो बहुत कीमती होता था उस जमाने के अंदर भाई, तो और ये 100 दीनार ये बराबर थे 1000 दिरहम के भाई, तो इसलिए हुजूर अलैहि सलाम ने वहां एक साल तक तशहीर का हुक्म दिया भाई, तशहीर का हुक्म दिया। जो 1000 दिरहम है उनका हुक्म हदीस से मालूम हो गया कि उनकी तशहीर एक साल की जाएगी भाई। और जो 10 दिरहम है, 10 दिरहम हमने देखा कि जो 10 दिरहम है ये बाज एतबार से उस 1000 दिरहम की तरह ही है, ये 10 दिरहम किसकी तरह है, 1000 दिरहम की तरह है बाज एतबार से भाई। किस तरह 10 दिरहम 1000 दिरहम की तरह है, कहते हैं जिस तरह 1000 दिरहम की चोरी में हाथ काटा जाता है इसी तरह कम अज कम 10 दिरहम के अंदर हाथ काटा जाता है, मालूम हुआ 10 दिरहम का भी वही हुक्म है जो 1000 दिरहम का है। इसी तरह एक औरत का महर 1000 दिरहम हो सकता है तो कम से कम महर जो हो सकता है वो 10 दिरहम है, मालूम हुआ जैसे 1000 दिरहम महर रखने से औरत हलाल हो जाती है इसी तरह 10 दिरहम महर से भी औरत हलाल हो जाती है, तो मालूम हुआ 10 दिरहम का वही हुक्म है जो 1000 दिरहम वाला है। लेकिन बाज एतबार से देखें तो ये 10 दिरहम 1000 दिरहम की तरह नहीं है, 1000 दिरहम पर साल गुजरे तो उस पर ज़कात आती है लेकिन 10 दिरहम पर साल गुजरे तो उस पर ज़कात नहीं आती। तो देखें बाज तो मालूम हुआ ये 10 दिरहम बाज एतबार से 1000 दिरहम की तरह है और बाज एतबार से 1000 दिरहम की तरह नहीं है, तो लिहाजा यहां पर हमने बतौर एहतियात के इसको 1000 वाला ही हुक्म दे दिया। एहतियात किस में थी कि बाज एतबार से तो 10 का वही हुक्म है जो 1000 वाला हुक्म है, लिहाजा 1000 वाला ही हुक्म दे, तो एहतियात इसी के अंदर है भाई, अगरचे बाज एतबार से यह उसकी तरह नहीं है लेकिन बहरहाल बाज एतबार से तो यह 1000 दिरहम की तरह है, लिहाजा 10 दिरहम को भी एहतियातन 1000 वाला ही हुक्म दे दिया गया भाई। बात समझ में आ गई, तो लिहाजा हमने 10 दिरहम या इससे ज्यादा के अंदर हुक्म लगा दिया कि इसमें एक साल तशहीर करवाई जाएगी, और जो 10 दिरहम से कम है वो तो किसी भी एतबार से 1000 दिरहम की तरह नहीं, जब वो उसकी तरह नहीं है तो वहां फिर पूरे साल की तशहीर भी वाजिब नहीं होगी, बल्कि उसमें फिर उस मुबतला बिही के राय के सुपुर्द होगा, जितना वो मुनासिब समझे तशहीर करवाएगा, यहां तक कि उसका गालिब गुमान हो जाए कि अब मालिक इसको तलाश नहीं कर रहा होगा तो फिर वो किसी फकीर पर सदका कर दे भाई। तो कहते हैं वजहुल अव्वली, पहले कौल की वजह यह है कि अन्न तकदीर बिल हौली वरदा फी लुक्तातिन, कि ये जो साल के साथ मुकरर करना है ये वारिद हुआ है उस लुक्ता के बारे में, कानत मिअत दीनारिन जो 100 दीनार था, तुसावी अल्फ दिरहमिन जो बराबर है 1000 दिरहम के, वल अशरतु वमा फौकहा फी मानल अल्फी और 10 दिरहम और इससे जो ज्यादा है वो भी 1000 के माना में ही है, फी ताल्लुक القطعي به في السرقه, इस बात के अंदर कि इसके साथ हाथ काटने का ताल्लुक होता है चोरी में। तर्जमा समझ में आ रहा है, कहते हैं वल अशरतु मा फौकहा फी मानल अल्फी और 10 दिरहम और इसे जो ज्यादा है वो 1000 दिरहम के माना में है भाई, किस चीज में, कहते हैं फी ताल्लुक القطعي به في السرقه, चोरी के अंदर हाथ काटने के ताल्लुक में, जैसे 1000 में हाथ काटते हैं 10 में भी हाथ काटते हैं, व ताल्लुक इस्तेहलाल फर्ज भी ही और औरत की शर्मगाह के हलाल होने के ताल्लुक में, यानी जैसे 1000 दिरहम से औरत की शर्मगाह हलाल हो गई यानी उसको महर मुकर्रर करना सही है, इसी तरह 10 दिरहम का भी यही हुक्म है। तो कहते हैं व ताल्लुक इस्तेहलाल फर्ज भी ही और इसकी वजह से औरत के शर्मगाह के हलाल होने के ताल्लुक में, वलैसत फी मानाहा फी हक ताल्लुक ज़कती और ये 10 जो है वो 1000 के माना में नहीं है, फी हक ताल्लुक ज़कती ज़कात के ताल्लुक के हक में, हजार के साथ तो जकात का ताल्लुक है लेकिन दस दिरहम के साथ तो जकात का ताल्लुक नहीं है। यह माना है वलैसत फी मानाहा फी हक ताल्लुक जकाती, और यह दस जो है हजार के माना में नहीं है जकात के ताल्लुक के एतबार से। फौजबना तारीफ बिल हौल एहतियातन, फौजबना तो हमने वाजिब करार दे दिया अतारीफ बिल हौल साल भर की तशहीर को एहतियातन बतौर एहतियात के, हमने साल की तशहीर को बतौर एहतियात के वाजिब करार दे दिया। वमा दून अल अशरती लैसफी मान अल अल्फी बिवज हिम्मा, वमा दून अल अशरती और वो जो दस दिरहम से कम है लैसफी मान अल अल्फी वो हजार के माना में नहीं है बिवज हिम्मा किसी भी एतबार से। फफवजना इला रायिल मुबतला बिही, तो इसको हमने सुपुर्द किया मुबतला बिही की राय के, वो शख्स जिसके साथ ये मामला पेश आया है जिसको ये माल मिला है उसकी राय के सुपुर्द कर दिया कि वो जितना मुनासिब समझे उतने दिन तशहीर करवा ले। तो कहते हैं फफवजना इला रायिल मुबतला बिही, तो इसको हमने उस मुबतला बिही शख्स की राय के सुपुर्द कर दिया। वकीला और कहा गया है, अब ये तीसरा कौल आ गया, पहला कौल इमाम साहिब का और उसकी वजह भी जिक्र कर दी, दूसरा कौल इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का कि एक साल तशहीर करवाई जाएगी कलील और कसीर में कोई फर्क नहीं है, और अब ये तीसरा कौल आ गया। कहते हैं वकीला और कहा गया है असहीहु, के सही कौल यह है कि अन शैअन मिन हादिहिल मकादीर लैस बिलाजिमिन, कि कोई भी चीज इन मिकदारों में से लाजिम नहीं है, ये जो एक साल या एक साल से कम जिक्र किया गया कोई भी इनमें से लाजिम नहीं है बल्कि मुबतला बिही की राय के सुपुर्द है भाई, यानी जितना वो मुनासिब समझे वो तशहीर करवा ले यहां तक कि उसका गालिब गुमान हो जाए कि अब मालिक इस माल को नहीं ढूंढ रहा होगा। और ये याद रखो ये कौल इसको इख्तियार किया है इमाम सरखसी रहमतुल्लाह ने और इसी पर फतवा है भाई। तो कहते हैं वकीला और कहा गया है असहीहु अन्न शय अमिन हादिहिल मकादीर लैस बिलाजिमिन, कि इन मकदारों में से कोई भी चीज लाजिम नहीं है। वयुफव्वज़ु इला रायिल मुल्तकिती, और ये उठाने वाले की राय के सुपुर्द है। युअर्रिफुहा इला अन यग़लिबा अला ज़न्निही, तो वो उसकी तारीफ उसकी तशहीर करवाएगा यहां तक कि उसका गालिब गुमान हो जाए। अन्न साहिबहा ला यतलुबुहा बादा ज़ालिक, कि इस लुकते का मालिक इसको तलब नहीं कर रहा होगा उस मुद्दत के बाद। सुम्मा तसद्दकु बिही, फिर वो उसको सदका कर दे। व इनकानतिल लुक्ततु शैअन ला यबका, भाई अगर लुक्ता ऐसी चीज है जो बाकी नहीं रहती यानी जल्दी खराब हो जाती है तो फिर कुछ तशहीर करवाए और खराब होने से पहले पहले फिर उसको सदका कर दे। बात समझ में, कुछ तशहीर करवाए खराब होने से पहले पहले भाई। तो कहते हैं वह इनकानतिल लुक्ततु शैअन ला यबका, और अगर लुक्ता ऐसी चीज है जो बाकी नहीं रहती यानी खराब हो जाती है। अर रफहू, तो उसकी तशहीर करवाए। हत्ता इजा खाफ अन यफसुदा, यहां तक कि उसको खौफ होने लगे कि यह खराब हो जाएगी तो तसद्दक बिही, तो उसको सदका कर दे। वयंबगी अन युअर्रिफहा फिल मौज़िउ अल्लज़ी असाबहा, अब बतला रहे हैं कहां कहां इसकी तशहीर करवाए। कहते हैं जहां वो चीज मिली थी उस जगह पर भी तशहीर करवाए लोगों को कहे, और इसी तरह जहां लोग जमा होते हैं वहां पर भी तशहीर करवाए, और इसी तरह मस्जिद के दरवाजों में तशहीर करवाए, इस तरह जल्द ही मालिक तक खबर पहुंच जाएगी भाई। कहते वयम बगी अयु अर्रिफहा, और मुनासिब यह है कि उसकी तशहीर करवाए। फिल मौज़िउ अल्लज़ी असाबहा, उस जगह के अंदर जहां उसको पाया है। वफिल मजामिउ, और लोगों के जमा होने की जगहों में जैसे बाजार वगैरह हैं या मस्जिद के दरवाजे हैं। फइन्न ज़ालिका अक़रबु इलल वुसूली इला साहिबिहा, इसलिए क्योंकि यह ज्यादा करीब है कि यह मालिक तक पहुंच जाए। वह इन कानत शई अन या अलमु अन साहिबहा ला यतलुबुहा, भाई अगर ऐसी चीज है कि जिसके बारे में इलम है कि मालिक इसको तलाश नहीं कर रहा होगा, जैसे घुटलियां हैं, जैसे घुटलियां वगैरह हैं या अनार के छिलके वगैरह हैं, तो कहते हैं फिर इस सूरत में इसको इस्तेमाल करना मुबाह है। मालिक यह नहीं बनेगा उठाने से, हां इसके लिए इस्तेमाल करना मुबाह है भाई। आप कहेंगे भाई गुटलियां और अनार के छिलके ये तो किसी को भी जरूरत नहीं होती भाई, ये आजकल के जमाने की बात नहीं हो रही। आजकल तो अल्लाह ने इतनी नियामतें कर दी, फिर भी बाज ऐसी जगह है जहां ये सारी नियामतें नहीं मिलती भाई। तो बाज औकात एक शख्स को एक कोई दरख्त या पौधे के लिए घुटलियों की जरूरत है, लेकिन वहां मिलती ही नहीं है, उसको कहीं रास्ते में पड़ी हुई मिल गई भाई, तो मालूम हुआ इसके लिए उठाना मुबाह है। तवज्जो है। या इसी तरह अनार के छिलके, उनके भी बास फायदे हैं भाई, तो किसी को अगर ये मिल गए और उस इलाके में मिलते ही नहीं है, तो इसके लिए उनको उठाना और इस्तेमाल करना जायज है, अलबत्ता ये उनके उठाने से मालिक नहीं बनेगा भाई। तो कहते हैं वह इनकानत शैअन, और अगर वो लुक्ता ऐसी चीज है, या अलमु अन्ना साहिबहा ला यतलुबुहा, कि उठाने वाला जानता है कि इनका मालिक इसको तलब नहीं कर रहा होगा, कन नवाती, जैसे कि घुटलियां हैं, व कुशूरी रुम्मानी, और अनार के छिलके हैं, यकूनु इल्का उहू इबाहतन, तो मालिक का इनको गिराना ये इबाहत है। मालिक ने जब इन घुटलियों और छिलकों को गिरा दिया है, मालूम हुआ वो इनको लोगों के लिए मुबाह कर रहा है, जो भी इससे फायदा उठाना चाहे उठा सकता है। हां, मालिक वही है, मालिक वही है भाई। तो कहते हैं यकूनु इल्का उहू इबाहतन, तो मालिक का इन चीजों को रास्ते में डाल देना ये मुबाह करना है। हत्ता जाज़ल इंतिफाउ बिही मिन गैरी तारीफिन, यहां तक कि इनसे नफा उठाना जायज है बगैर तशहीर के ही। वलाकिन नहु मुबकन आला मिल्की मालिकी ही, लेकिन ये बाकी होंगी उसी मालिक की मिल्कियत पर। वलाकिन नहु मुबकन, लेकिन ये बाकी होंगे अला मिल्की मालिकी ही, इनके मालिक की मिल्कियत पर, यानी वही मालिक रहेगा इनका, अलबत्ता लोगों के लिए इनसे नफा उठाना जायज होगा। मुबकन ये इसमें मफ़ऊल है भाई, अबका युबकी इबका अन से भाई, बकिया यबका से इसको इसमें मफ़ऊल ना बनाएं, मबकियुन, क्योंकि वहां इसमें फाइल आ जाता वलाकिन नहु बाकिन अला मिल्की मालिकी ही, तो बाकी इसमें फाइल कहना चाहिए था, लेकिन साहिबे हिदाया क्या लाए हैं, मोबकान, अगर मुजर्रद से होता तो बाकिन सीगा होना चाहिए था कि मालिक की मिल्कियत पर बाकी है भाई, तो इसको इसमें मफूल पढ़े बाबे इफाल से भाई। तो कहते हैं वला कि न हो मुबकन अला मिल्की मालिकी ही, लेकिन ये डाली हुई चीज उस मालिक की मिल्कियत पर बाकी है। लिअन्न तमलीक मिनल मजहूलि ला यसिहु, भाई यहां तर्जमे पर नजर रखना भाई, लिअन्न तमलीक मिनल मजहूलि, इसलिए क्योंकि मालिक बनाना मिनल मजहूलि, मजहूल को मजहूल की तरफ से मालिक बनाना नहीं, मालिक तो एक मुतायन शख्स है जिसने ये चीजें डाली हैं, हां मजहूल को मालिक बनाना सही नहीं। आप अपनी चीज का मालिक किसी को बनाना चाहते हैं तो किसी मुतायन को मालिक बनाएंगे। कहते हैं ली अन्न तमलीक मिनल मजहूल ला यसिहु, इसलिए क्योंकि मजहूल को मालिक बनाना सही नहीं। याद रखो मल्लक युमल्लिकु तमलीक का सिला मीन आता है, मसलन मैंने जैद को एक चीज का मालिक बना दिया तो मैं कहूंगा मल्लक तु मीन जैदिन, मल्लक तो मीन जैदिन, मैंने जैद को इसका मालिक बना दिया, तो यहां पर भी मीनल मजहूल यानी मजहूल को मालिक बनाना सही नहीं है। मालिक ने छिलके रास्ते में डाल दिए कि जो भी उठाएगा वो मालिक हो जाएगा, नहीं भाई ये तो आप मजहूल आदमी को मालिक बना रहे हैं, किसी मजहूल को मालिक नहीं बना सकते, किसी मुअय्यन को मालिक बना सकते हैं, लिहाजा मजहूल को मालिक बनाना सही नहीं, तो जो भी उठा ले वो मालिक नहीं बन सकता क्योंकि वो मजहूल है भाई। तो कहते हैं लि अन्न तमलीक मिनल मजहूल ला यसिहु, इसलिए क्योंकि मजहूल को मालिक बनाना सही नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई, आगे देखिए भाई, قال فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها, قال صاحب قدوری فرماتے ہیں فإن جاء صاحبها, اگر اس لقطے کا مالک آ گیا, جزا محذوف ہے تو اچھی بات ہے یہ چیز اس کے سپرد کر دے, تو کہتے ہیں فإن جاء صاحبها, اگر اس لقطے کا مالک آ گیا تو وہ چیز اس کے حوالے کر دے, وإلا تصدق بها, और अगर ऐसा ना हो यानी मालिक ना आए तो तसद्दका बिहा, तो उसको सदका कर दे, ईसालन लिल हक इलल मुस्तहिकी, हकदार को उसका हक पहुंचाने के लिए, हकदार को उसका हक पहुंचाने के लिए भाई, इस चीज का जो मालिक है उसको आप ये असल चीज तो नहीं पहुंचा सके, लेकिन चलो इसके बदले में इसको सवाब मालिक को पहुंच जाएगा भाई, तो हकदार को उसका हक पहुंच गया जिस कदर मुमकिन हो सके। असल चीज तो हम ना पहुंचा सके तो कम से कम सवाब हमने पहुंचा दिया। यह माना है ईसालन लिल हक इलल मुस्तहिक, हकदार को उसका हक पहुंचाने के लिए। वह हुआ वाजिबुन बिकद्रिल इमकानी, और यह वाजिब है जिस कदर मुमकिन हो सके, हकदार को हक पहुंचाना वाजिब है जिस कदर मुमकिन हो सके। वदालिका भी ईसाल आईनीहा, और ये ऐन उस चीज को पहुंचाने से होगा। इंदा जफरी भी साहिबी हा, जफीरा यसफरु जफरन का माना है कोशिश के बाद किसी चीज को हासिल कर लेना, कोशिश के बाद किसी चीज को पा लेना। तो यहां पर भी अगर मालिक आपको मिलता भी है तो कोशिश के बाद मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा। तो अगर मालिक मिल जाए तो फिर तो ऐन वही चीज उसको देना पड़ेगी, और अगर मालिक आपको नहीं मिलता कोशिश के बावजूद, फिर अब आप उसको उसका सवाब पहुंचा देते हैं, उसकी तरफ से सदका कर देते हैं। तो कहते हैं इसलिए क्योंकि जिस कदर मुमकिन हो सके हकदार को उसका हक पहुंचाना वाजिब है। वदालिका भी ईसाल आईनीहा, और वो ऐन लुक्ता को पहुंचाने से होगा। इंदा जफरी भी साहिबीहा, उस लुक्ता के मालिक को पा लेने के वक्त, उस लुक्ता के मालिक को पा लेने के वक्त ऐन लुक्ता उस तक पहुंचाने से हकदार को उसका हक पहुंचेगा। वह ईसाल इवजी, या इवज पहुंचाने के जरिए होगा, और इवज क्या है, कहते हैं वह हुआ सवाब, और वो सवाब है अला एतबारी इजाजती ही, उस मालिक की इजाजत के एतबार से, मालिक की तरफ से इजाजत का एतबार करते हुए हम उसकी तरफ से क्या कर देंगे, सदका कर देंगे भाई। और ये साहिब हिदायत ने इसलिए जिक्र किया कि अगर मालिक की तरफ से इजाजत ना हो तो उसको सवाब नहीं मिलेगा भाई। चुनांचे आगे आपको बताएंगे अगर मालिक आ गया और ये इस चीज को सदका कर चुका है तो फिर मालिक चाहे इजाजत दे दे, इसी तरह सदके को चलने दे, तो मालिक को सवाब मिल गया। और अगर उसने कहा नहीं तुमने मेरी चीज क्यों सदका की, मुझे जमान दो, तो याद रखो फिर सदके का सवाब न मिला क्योंकि उसकी तरफ से इजाजत नहीं है, और नीज अब इस आदमी को जमान देना पड़ेगा। तो कहते हैं वह ईसालिल इवजी, और या इसका इवज पहुंचाने के जरिए होगा। वह हुआ सवाब, और वो सवाब है अला एतबारी इजाजती ही, मालिक की इजाजत का एतबार करते हुए। अत्तसद्दुका बिहा, भाई किस चीज की इजाजत, अत्तसद्दुका बिहा उसके सदका करने की, कि मालिक की तरफ से उसके सदका करने की इजाजत का एतबार करते हुए। वह इंशा अमसा कहा, और अगर चाहे तो ये आदमी जिसको लुक्ता मिला है ये इस लुक्ते को अपने पास रोक ले। रजा अज़फरी भी साहिबिहा, इसके मालिक को पा लेने की उम्मीद करते हुए कि शायद मिल जाए तो मैं उसको दे दूंगा। काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह इन जा साहिबुहा, अगर उस लुक्ते का मालिक आ गया यानी बादा मा तसद्दका बिहा, यानी बाद उसके के जब उठाने वाला उसको सदका कर चुका है तो मालिक आ गया। फहुआ बिल खियारी, तो मालिक को इख्तियार है, याद रखो मालिक को तीन इख्तियार हैं, या तो इसी सदके को इसी तरह चलने दे मालिक को सवाब मिल जाएगा, और अगर वो मालिक चाहे तो इस उठाने वाले से जमान ले ले, और चाहे तो उस फकीर से जमान ले ले, उस फकीर से भी जमान ले सकता है क्योंकि फकीर ने भी मालिक की चीज उसकी इजाजत के बगैर ली, जिस तरह मुल्तकित ने मालिक की इजाजत के बगैर चीज ली थी इसी तरह फकीर ने भी मालिक की इजाजत के बगैर ली है वो चीज। और आप ये न कहें कि फकीर को तो इस सदका करने वाले ने धोखा दिया है, नहीं भाई कोई धोखा नहीं है, फकीर और उसके दरमियान कोई आकद नहीं हो रहा, आकद हुआ होता तो फिर इस सूरत में उस पर फकीर इस पर रुजू कर सकता था, यहां कोई आकद वगैरह नहीं हुआ, लिहाजा फकीर पर भी मालिक रुजू कर सकता है और फकीर फिर उस चीज उठाने वाले की तरफ रुजू नहीं कर सकता क्योंकि उसने किसी आकद में यह चीज नहीं दी थी फकीर को, वैसे ही दी थी भाई। तो कहते हैं फहुआ बिल खियारी, अगर सदके के बाद मालिक आ गया तो उसको इख्तियार है। इन शाह अमजा सदकता, वो चाहे तो सदके को चलने दे, तो सदके को जारी रखे। वलहू सवाब हुआ, और उसके लिए उस सदके का सवाब होगा। ले अन्न तसद्दुका, इसलिए क्योंकि सदका करना। व इन हसला भी इज़्नि शरई, अगरचे वो शरीयत की इजाजत से हासिल हुआ है, अगरचे सदका करना किसकी इजाजत से हुआ है, शरीयत की इजाजत से, लेकिन मालिक की इजाजत तो नहीं थी, तो लिहाजा मालिक की इजाजत भी जरूरी है कि वो इजाजत दे। कहते हैं तसद्दुक व इन हसल भी इज़्नि शरई, इसलिए क्योंकि सदका अगरचे शरीयत की इजाजत से हासिल हुआ है, लम यहसुल भी इज़्नि ही, लेकिन मालिक की इजाजत से तो नहीं हुआ। सदका किसकी इजाजत से हुआ है? शरीयत की इजाजत से, अगरचे मालिक की इजाजत नहीं। भाई शरीयत की तरफ से कैसे इजाजत है? यह हाशिए में हदीस दी हुई है भाई। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मनिल तकत शैअन, हदीस मिल गई भाई हाशिए में, मनिल तकत शैअन, जिसने जमीन से कोई चीज उठा ली, फल युअर्रिफ हुसनतन, तो उसे चाहिए कि एक साल तक उसकी तशहीर करवाए, फइन जाअ साहिबुहु फलयरुद्दहु, अगर उसका मालिक आ जाए तो उसे चाहिए उसको लौटा दे, वह इल्लम यति साहिबुहु, और अगर उसका मालिक न आया, फल यतसद्दक बिही, तो उस उठाने वाले को चाहिए कि उसे सदका कर दे। तो मालूम हुआ शरीयत ने लुक्ते को सदका करने की इजाजत दी है। अब फिर मतन पर आइए, कहते हैं लिअन्न तसद्दुक व इन हसल भी इज़्नि शरई, इसलिए क्योंकि सदका करना अगरचे शरीयत की इजाजत से हुआ है, लम यहसुल भी इज़्नि ही, लेकिन उस मालिक की इजाजत से तो नहीं हुआ, फयतवक्कफु अला इजाजती ही, तो यह मौकूफ रहेगा मालिक की इजाजत पर, वल मिल्कु यसबुतु लिल फकीर क़ब्ल अल इजाजति फला यतवक्कफु अला क़ियाम अल महल, यह एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज यहां यह होता है कि अगर यह सदका मालिक की इजाजत पर मौकूफ है तो अभी तक फकीर इसका मालिक नहीं बना, और जब फकीर इसका मालिक नहीं बना, अब इजाजत के बाद मालिक बनेगा, तो जरूरी है कि वो चीज फकीर के पास अभी भी मौजूद हो, अभी हलाक ना हुई हो, अभी हलाक ना हुई हो। अगर वो चीज फकीर के पास हलाक हो चुकी है या वो उसको खर्च कर चुका है, तो फिर इजाजत देने का क्या माना? जब वो चीज ही नहीं है जिसकी इजाजत दी जा रही है, तो फिर ये इजाजत नहीं होनी चाहिए। जैसे फजूली की बैअ, भाई आपको मैंने बतलाया था, फजूली कहते हैं जायद शख्स को जिसका किसी एक चीज से ताल्लुक नहीं है। मसलन आपकी गाड़ी है, आप इस गाड़ी को बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, किसी और को यह गाड़ी बेचने की इजाजत नहीं, क्योंकि आपकी ममलूका है। लेकिन आपके एक दोस्त ने आपको बताए बगैर ही आपकी गाड़ी किसी को बेच दी, तो इसको कहेंगे बेअ फजूली, क्योंकि वो ये गाड़ी का ना वो मालिक है ना वो आपकी तरफ से वकील है, तो ये फजूली की बेअ है। और आपको इस बेअ का पता चला तो आप इस बेअ की इजाजत देंगे तो ये बेअ नाफिज हो जाएगी, आप इजाजत नहीं देंगे तो बेअ बातिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तवज्जो है, तो फजूली की बेअ जो है वो भी मालिक की इजाजत पर मौकूफ होती है, लेकिन उसमें जरूरी है जिस वक्त मालिक इजाजत दे वो मबीआ मौजूद होना चाहिए। अगर वो मबीआ ही खत्म हो चुका है तो फिर मालिक की इजाजत देने से भी वो बेअ मुनाकिद नहीं होगी। तो जैसे फजूली की बेअ जो है वो मालिक की इजाजत पर मौकूफ होती है, और मालिक की इजाजत के बाद वो दूसरा आदमी मालिक बनता है, लिहाजा जब दूसरा आदमी इजाजत के बाद मालिक बन रहा है तो मालूम हो उस वक्त उस मबीए का मौजूद होना जरूरी है, फिर ही मालिक बनेगा। जब खत्म हो चुकी है फिर मालिक किस चीज का बनेगा? तो लिहाजा यहां पर भी अगर यह सदका जो है मालिक की इजाजत पर मौकूफ है तो फिर मालिक की इजाजत के बाद फकीर मालिक बनेगा, लिहाजा इस वक्त जरूरी है कि वो चीज वो लुकता मौजूद होना चाहिए फकीर के पास, फिर ही वो मालिक बनेगा। तो आपको बतलाएंगे कि नहीं, यहां पर शरीयत की तरफ से इजाजत थी, लिहाजा फकीर का जब सदका दिया फकीर उसी वक्त मालिक बन गया। हां, अभी असल मालिक की तरफ से इजाजत नहीं, फकीर मालिक तो बना है लेकिन यह मिल्कियत लाजिम नहीं है। मालिक आ जाए तो वापस ले सकता है, फकीर मालिक बन गया लेकिन यह मिल्कियत लाजिम नहीं, मालिक आकर वापस ले सकता है। तो मालूम हुआ फकीर मालिक की इजाजत देने से पहले ही मालिक बन चुका है, लिहाजा जब मालिक इजाजत दे तो उस वक्त उस लुक्ते का होना जरूरी नहीं, क्योंकि फकीर पहले से ही मालिक बन चुका है भाई। अगरचे मिल्कियत लाजिम नहीं थी लेकिन बहरहाल मालिक तो बन चुका था भाई। तो कहते हैं वल मिल्कु यस्बुतु लिल फकीर क़ब्ल अल इजाजती, और ये मिल्कियत जो है साबित हो जाती है फकीर के लिए उस लुक्ते के मालिक की इजाजत से पहले ही, फला यतवक्कफु अला क़ियाम अल महल, लिहाजा ये इजाजत मौकूफ नहीं है उस महल की मौजूदगी पर, यानी उस लुक्ते की मौजूदगी पर यह इजाजत मौकूफ नहीं है। महल से क्या मुराद है? वो जो सदका किया है फकीर पर, वो जो लुकता है भाई, तो फलाय तवक्कफ अला कियामिल महल, लिहाजा ये इजाजत जो है उस महल की मौजूदगी यानी उस लुकते की मौजूदगी पर मौकूफ नहीं है। बिखिलाफी बैल फजूली, बखिलाफ फजूली की बै के लिए सबूत ही बादल इजाजती फी ही, इसलिए क्योंकि उसके अंदर मिल्कियत इजाजत के बाद साबित होती है, लिहाजा वहां पर मबीए का इजाजत के वक्त मौजूद होना वो जरूरी है भाई। आगे देखिए, वह इंशा अजम मन अल मुल्तकिता, और अगर मालिक चाहे तो उठाने वाले को जामीन बना दे, उससे जमान ले ले, ले अन्नहू सल्लम मालहू इला गैरिही, इसलिए क्योंकि उस मुल्तकित ने मालिक के माल को दूसरे के हवाले कर दिया है, बिगैरी इज्नही, मालिक की इजाजत के बगैर ही, इला अन्नहू बि इबाहति मिन जिहति शरई। सवाल पैदा होता है कि शरीयत की तरफ से जब इजाजत थी सदका करने की तो फिर जमान क्यों आएगा इस पर? कहते हैं शरीयत की तरफ से इजाजत थी, शरीयत ने लाजिम नहीं किया था, यह अपने पास लुकता रोक भी सकता था और सदका भी कर सकता था, तो शरीयत ने सदका करना मुबाह किया था, और शरीयत एक चीज को लाजिम ना करे बल्कि सिर्फ जायज करे तो उसके साथ जमान जमा हो सकता है। जैसे शदीद भूख की हालत में एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान का माल उसकी इजाजत के बगैर खाना जायज हो जाता है अपनी जान बचाने के लिए, शरीयत ने उसके लिए वो माल ही मुबाह कर दिया है, लेकिन फिर भी जमान देना पड़ता है, दूसरे का माल खाया है, जिंदगी तो बच गई, दूसरे को अब उसके माल का जमान देना पड़ेगा, तो शरीयत के किसी चीज को मुबाह करने के साथ जमान जमा हो सकता है। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वह इंशा अजम मनल मुल्तकिता, और अगर मालिक चाहे तो इस उठाने वाले को जामिन बना दे, लिअन्नहू सल्लमा मालहू इला गैरिही बिगैरी इज्निही, इसलिए क्योंकि इस मुल्तकित ने इसका माल किसी दूसरे के सुपुर्द कर दिया है इस मालिक की इजाजत के बगैर ही, इल्ला अन्नहू बिइबाहति मिन जिहति शरई, मगर यह कि यह उसका सुपुर्द करना शरीयत की जानिब से मुबाह कर देने की वजह से था, शरीयत की तरफ से इजाजत की वजह से था। वहादा ला युनाफिज जमाना हक्कन लिल आबदी, और यह बतौर बंदे के हक के जमान के मुनाफी नहीं है। शरीयत की तरफ से एक चीज को मुबाह कर देना यह बतौर बंदे के हक के जमान के मुनाफी नहीं है, जमान भी वहां आ सकता है। तो कहते हैं वहाद अला युनाफिज जमाना, और शरीयत का यह मुबाह कर देना यह जमान के मुनाफी नहीं है, हक्कन लिल आबदी, बतौर बंदे के हक के कि बतौर बंदे के हक के उस पर जमान आ जाए। कमाफी तनावली माल इल गैरी, जैसे कि गैर का माल खा लेना, हालत अल मखमसती, भूख की हालत में शरीयत ने मुबाह किया है लेकिन उसमें भी जमान आता है। वह इंशा अजम मन अल मिस्कीना, और अगर चाहे तो वो मालिक जो है उस मिस्कीन यानी फकीर को जामिन बना दे, इदा हलकफी यदिही, जब वो लुकता उस फकीर के कब्जे में हलाक हो जाए, लिअन्नहू कबज़ा मालहू बिगैरी इज्निही, इसलिए क्योंकि फकीर ने इस मालिक के माल पर उसकी इजाजत के बगैर कब्जा किया था। वह इन कान क़ाइमन अख़ज़हू, और अगर वो लुकता अभी भी इस फकीर के पास मौजूद है, अख़ज़हू, तो उसको ले लेगा, लिअन्नहू वजदा ऐन मालिही, इसलिए क्योंकि मालिक ने ऐन अपने माल को पा लिया है तो उसको ले सकता है भाई। और मैंने आपको बतलाया कि आप यह न कहें कि फकीर से जमान लिया जा रहा है, फकीर को तो उस उठाने वाले ने चीज दी थी, मालूम उसने फकीर को धोखा दिया है, तो मैंने जवाब जिक्र कर दिया कि उसकी जानिब से कोई धोखा नहीं है, इसलिए क्योंकि उसने कोई हकद वगैरह करके फकीर को यह माल नहीं दिया था, वैसे ही दिया था, लिहाजा फकीर जमान देने के बाद उस मुल्तकित पर रुजू नहीं कर सकता। आगे देखिए, काल वयजूजुल इल्तिकातु फिश्शाति वल बकरी वल बईर, भाई अगर किसी को सहरा के अंदर कोई ऊंट बकरी गाय बैल वगैरह मिल जाते हैं तो क्या ये भी लुकता है? क्या इनको भी मालिक तक पहुंचाने की नीयत से रखना जायज है? तो आपको बतलाएंगे कि हमारे नजदीक जायज है। अलबत्ता इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो चीजें अपनी हिफाजत खुद कर सकती हैं, जैसे गाय है, ऊंट है, घोड़ा वगैरह, ये किसी हद तक अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, लिहाजा इनको पकड़ना ये मकरूह है भाई, मकरूह है, तहरीमी है भाई। और जो चीज अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती और उसके जाया होने का खतरा है, मसलन बकरी वगैरह है कि इसे भेड़िए वगैरह या कोई चीजें खा लेंगी, तो वो लुक्ता के हुक्म में है, उसको हिफाजत की नीयत से पकड़ा जा सकता है। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वयजूजुल इल्तिकात फी शाति वल बकरी वल बईरी, और इल्तिकात जायज है यानी उठाना पकड़ना जायज है, फी शाति भेड़ बकरी में, वल बकरी और गाय बैल में, वल बईरी और ऊंट के अंदर। وقال مالك وشافعي رحمهم الله تعالى, और इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमहुम अल्लाह फरमाते हैं, اذا وجد البعير والبقر في الصحراء, कि जब सहरा के अंदर कोई ऊंट या गाय बैल वगैरह मिले, फतर को अफजल, तो इनको छोड़ना अफजल है, वाला हादल खिलाफ फरसु, और इसी इख्तिलाफ पर घोड़ा भी है। लहुमा, इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमहुमल्ला की दलील यह है कि अन्नल असल फी अख्ज़ मालिल गैरिल हुरमतु, कि गैर के माल को लेने में असल जो है वो हुरमत है। असल क्या है? गैर का माल लेना हराम है। क्योंकि लहुमा, इमाम शाफी और इमाम मालिक रहमहुल्लाह की दलील यह है, अन्नल असल फी अख्ज़ मालिल गैरी, कि गैर का माल लेने में असल जो है अल हुरमतु, वो हराम होना है, वल इबाहतु मखाफत अज़्ज़ियाई, और इबाहत उस चीज के साया होने के खौफ से होती है। इज़ा काना माहा, और जब उस लुक्ते के साथ ऐसी चीज मौजूद है, मा यदफाउ अन नफसिहा, कि जिसके जरिए वो अपना दिफा कर सकता है, जब लुक्ते के साथ ऐसी चीज मौजूद है कि वो अपना दिफा कर सकता है, तो कहते हैं वह इदा काना माहा मा यदफाउ अन नफसिहा, और जब उस लुक्ते के साथ ऐसी चीज मौजूद है जिसके जरिए वो अपना दिफा कर सकता है यानी अपना बचाव कर सकता है, तो यकिल्लु ज़याउ, तो जाया होना कम हो जाता है, अब जाया होने का एहतमाल कम हो जाता है। वलाकिन्नहु युतवहमु, लेकिन उसका वहम होता है, जाया होने का एहतमाल कम हो गया, अगरचे अब भी वहम है लेकिन कम एहतमाल है। फयुक्ज़ा बिल कराहती, तो फैसला किया जाएगा कराहत का, इस पकड़ने के मकरूह होने का फैसला किया जाएगा। व नद भी इलतर की, नदबा यंदुबू का माना होता है किसी चीज की तरफ दावत देना, मुस्तहब को भी मंदूब कहते हैं क्योंकि उसके भी करने की दावत दी जाती है कि ऐसा करना बेहतर है, तो कहते हैं फयुक्ज़ा बिल कराहती व नद भी इलतर की, तो फैसला किया जाएगा कराहत का और तर्क की तरफ दावत देने का, यानी इसका छोड़ना मंदूब और मुस्तहब होगा और पकड़ना मकरूह होगा भाई, ये माना है। फयुक्ज़ा बिल कराहती व नद भी इलतर की, तो पकड़ने के मकरूह होने का और छोड़ने के मंदूब होने का फैसला किया जाएगा। वलना, और हमारी दलील यह है, अन्नहा लुक्ततुयु तवहमु ज़याउहा, कि ये जानवर जो हैं ये भी ऐसा लुक्ता है कि इनके जाया होने का वहम होता है। फयुस्तहब्बु अख्ज़ुहा व तारीफुहा, लिहाजा इनको पकड़ना और इनकी तशहीर करना यह मुस्तहब है। सियानतन लिअमवालिन्नासी, लोगों के मालों की हिफाजत करने के लिए, कमाफी शाती, जैसे कि भेड़ बकरी में है, भेड़ बकरी के अंदर तो आप भी कहते हैं कि इनको पकड़ना हिफाजत की नीयत से जायज है, तो ये गाय बैल वगैरह भी इसी की तरह हो गए। फइन अनफकल मुल्तकितु अलैहा, अब ये जो लुक्ता है, अगर ये जानवर है कोई, तो इस पर वो खर्चा करता है, चारा वगैरह इसको खिलाता है, तो आपको बतलाएंगे अगर उस मुल्तकित ने काजी और हाकिम की इजाजत के बगैर इस जानवर पर खर्चा किया है तो यह मुतबर्रअ है। मुतबर्रअ, मैंने आपको बतलाया था, तबर्रो कहते हैं अपनी तरफ से कोई चीज देना जो किसी पर लाजिम ना हो, तो गोया ये अपनी जेब से वैसे ही खर्चा कर रहा है, ये मालिक के जिम्मे दैन नहीं है, मालिक के जिम्मे दैन नहीं है भाई। कहते हैं फइन अनफकल मुल्तकितु अलैहा, और अगर मुल्तकित ने उस लुक्ते पर खर्च किया, बगैर इस्निल हाकिम, हाकिम की इजाजत के बगैर ही, फहुआ मुतबर्रउन, तो ये खर्च करने वाला इसमें मुतबर्रअ है, लिकुसूरी विलायती अन जिम्मतिल मालिकी, इसलिए क्योंकि इसकी विलायत नाकिस है मालिक के जिम्मे से, यानी ये मुल्तकित उस जानवर पर खर्च कर रहा है तो मालिक के जिम्मे ये कर्ज लाजिम नहीं कर सकता क्योंकि इसको मालिक के जिम्मे की विलायत हासिल नहीं है। यह माना है लिकुसूरी विलायती ही बवजह इसकी विलायत के नाकिस होने के अन जिम्मतिल मालिक की उस चीज के मालिक के जिम्मे से कि उस मालिक के जिम्मे की इसे विलायत हासिल नहीं, यह उस पर कर्जे को लाजिम नहीं कर सकता कि मैंने तुम्हारे जानवर पर खर्च किया है अब तुम्हें वो देना पड़ेगा। नहीं भाई, यह उस पर कर्जे को लाजिम नहीं कर सकता। हां, मालिक को अखलाकन देने चाहिए भाई, लेकिन यह लाजिम नहीं कर सकता, जबरन नहीं ले सकता। आगे देखिए, वह इन अनफका भी अमरी ही, और अगर यह मुल्तकित ने हाकिम के हुक्म से इस जानवर पर खर्च किया है, कानजालिका दैनन अला साहिबिहा, तो यह खर्चा जो है यह उस लुक्ते के मालिक पर दैन होगा। लिअन्ना लिल काजी विलायतन फी मालिल गाइबी, इसलिए क्योंकि काजी को विलायत होती है गायब आदमी के माल में, नजारन लहू, उस पर शफकत करते हुए, उसकी रियायत रखते हुए। वकद यकून नजर फिल इनफाक अलामानु बयनु, और कभी कभार जो रियायत और शफकत होती है वो खर्च करने में होती है उस वजह से जो हम बयान करेंगे। बाज औकात शफकत किस में होती है? खर्च करने में। काजी उसको इजाजत दे दे, दो तीन दिन तक इस जानवर पर खर्च करो और मालिक का इंतजार करो। अगर दो तीन दिन तक मालिक नहीं आता, फिर काजी उसको हुक्म दे देगा कि इस चीज को बेच दो और पैसे महफूज रख लो, जब मालिक आए तो उसके हवाले कर देना। और ये दो तीन दिन जो इसने खर्चा किया है काजी के कहने पर, तो फिर वो जो चीज बेचेगा उसी के समन में से अपना दैन वसूल कर लेगा। तो कहते हैं वकद यकून नजर फिल इनफाक अला मानु बयनु, और कभी कभार जो शफकत होती है वो उस लुकते पर खर्च करने में होती है, अला मानु बयनु, उस वजह से जो हम बयान करेंगे। ये दो तीन सत्रों के बाद ही साहिब हिदाया बयान करेंगे। आगे देखिए, व इदारु फि अजालिका इलल हाकिमी नजर फीह, भाई अगर ये मसला हाकिम के पास ले जाया गया, एक आदमी ने कहा मुझे ऊंट या गाय मिली है, तो हाकिम उसके अंदर गौर करेगा। अगर उस जानवर से कोई काम लिया जा सकता है, इसे कोई किराए पर दिया जा सकता है, फिर तो हाकिम उसको किराए पर दे दे। इस सूरत में जो किराया आएगा उसी के जरिए जानवर का खर्चा पूरा होता रहेगा। तो कहते हैं वह इदा रुफिया जालिका इलल हाकिमी, और जब यह लुकते का मामला हाकिम तक ले जाया गया, नजारा फी ही, तो हाकिम इसके अंदर गौर फिक्र करेगा। फइन कान लिल बहीमती मनफातुन, और अगर उस चौपाई का कोई फायदा है, आ जा रहा, तो उसको किराए पर दे देगा हाकिम। व अनफका अलैहा मिन उजरतिहा, और उस पर खर्च करेगा उसी की उजरत और किराए में से। लिअन्न फीही इबका अल आइनी, इसलिए क्योंकि इसके अंदर उस आयन को बाकी रखना है, उस चीज को बाकी रखना है, अला मिल्की ही, उसी मालिक की मिल्कियत पर, मिन गैरी इल्जामी दैनी अलैही, बगैर उस पर दैन को लाजिम किए। इसके अंदर भाई मालिक का फायदा है कि उसकी चीज उसी तरह महफूज रहेगी और उसके ऊपर दैन भी लाजिम नहीं आएगा। यह माना है लिअन्ना फीही इबका अलाइन अला मिल्की ही, इसलिए क्योंकि इसके अंदर उस चीज को बाकी रखना है उसी मालिक की मिल्कियत पर, मिन गैरी इल्जामी दैनी अलैही, बगैर उस पर कोई दैन लाजिम किए। वकदालिका यफअलु बिल अब्दिल आबिकी, और इसी तरह हाकिम करे भागे हुए गुलाम के बारे में। अगर किसी का कोई गुलाम भाग गया है और वो किसी ने पकड़ लिया और हाकिम के पास ले आया कि किसी का भागा हुआ गुलाम है, तो अब उस गुलाम को अगर इजारे पर दिया जा सकता है तो इजारे पर और खिदमत के लिए दे दिया जाएगा और उसी आमदनी से गुलाम पर खर्च किया जाएगा और फिर मालिक तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा। तो कहते हैं वकदालिका यफअलु बिल अब्दिल आबिकी, और इसी तरह करेगा हाकिम भागे हुए गुलाम में। अबका याबिकू का माना है भाग जाना, तो आबिक वो भागा हुआ गुलाम। तो कहते हैं वकदालिका यफअलु बिल अब्दिल आबिकी, और इसी तरह हाकिम करेगा भागे हुए गुलाम में। व इल्लम यकुन लहा मनफातुन, और अगर उस चौपाए का कोई फायदा नहीं, जो किसी को लुकता मिला है, ऊंट या गाय, वो जानवर जो मिला है, तो कहते हैं वह इल्लम यकुन लहा मनफातुन, और अगर उस चौपाए का कोई फायदा नहीं यानी उसे इजारे पर नहीं दिया जा सकता जैसे भेड़ बकरी वगैरह है, वह खाफ और हाकिम को यह खौफ है अंतस्तगरिकन नफकतु कीमतहा कि नफका घेर लेगा इसकी कीमत को कि अगर इस पर खर्च किया जाएगा तो इसके तो खर्चा इसकी अपनी कीमत से भी बढ़ जाएगा भाई। तो कहते हैं वह खाफ और हाकिम को यह खौफ है अंतस्तगरिकन नफकतु कीमतहा कि इसका नफका जो है वो इसकी कीमत को घेर लेगा, बाहा तो हाकिम उसको बेच दे, वह आमारा बेहिफ़ समनिहा और उसके समन महफूज करने का हुक्म दे दे, इबका अन लहू मानन इंदा ताजुरी इबका इही सूरतन उस चीज को माना के एतबार से बाकी रखने के लिए जब सूरतन उसको बाकी रखना मुश्किल था भाई। सूरत के एतबार से तो बकरी को हम ना रख सके उसको बेच देंगे लेकिन उसकी कीमत जो है वो भी उसी बकरी के मिसल है माना के एतबार से, तो गोया माना के एतबार से वो चीज अभी भी महफूज है। ये माना है कि उसके हिफाजत का उसकी समन की हिफाजत का हुक्म दे देगा, इबका अन लहू मानन उस चीज को माना के एतबार से बाकी रखने के लिए यानी मालियत के एतबार से बाकी रखने के लिए, इंदा ताजुरी इबका इही सूरतन जिस वक्त सूरतन इसको बाकी रखना मुमकिन न रहे, तो सूरतन मुमकिन नहीं है तो मानन यानी मालियत के एतबार से उसको बाकी रखा जाएगा। वह इन कानल असलहुल इनफाका अलैहा, भाई देखिए साहिब हिदायत ने दो सतरें पहले वादा किया था कि बाज औकात जानवर पर खर्च करने में शफकत होती है, अब वो बयान करने लगे हैं कहते हैं वह इन कानल असलहुल इनफाका अलैहा और अगर ज्यादा बेहतर जो है उस लुकते पर खर्च करना हो तो अजीना फी जालिका तो काजी इसकी इजाजत दे देगा, व जालन नफकता दैनन अला मालिकिहा और वो जो खर्चा है वो मालिक पर दैन करार दे देगा जी। उस खर्चे को मालिक पर दैन बना देगा, लिअन्नहु नुसिबा नाजिरन इसलिए क्योंकि हाकिम को मुकर्रर किया गया है नाजिरन शफकत करने वाला बना करके, वो लोगों पर शफकत करता है उनकी जान माल और इज्जत का ख्याल रखता है। तो कहते हैं लिअन्नहु नुसिबा नाजिरन इसलिए क्योंकि हाकिम को शफकत करने वाले के तौर पर मुकर्रर किया गया है, वफी हादा नजर मिनल जानिबैनी और इसके अंदर दोनों जानिब की रियायत है जी। दोनों जानिब की रियायत है, जब उस जानवर पर खर्च करने का काजी ने हुक्म दे दिया कि ये मालिक पर दैन हो जाएगा तो मालिक की भी रियायत हो गई उसका जानवर महफूज रहेगा और जो इस पर खर्च कर रहा है उसकी भी रियायत हो गई कि उसे उसका माल बाद में मिल जाएगा। तो ये माना है वफी हादा नजर मिनल जानिबैनी और इसके अंदर दोनों जानिब की रियायत है, कालू फुकहा फरमाते हैं इन्नमा यामुरु बिल इन्फाकी यौमैनी औ सलासता अय्यामिन अला कद्री मा यारा, फुकहा फरमाते हैं कि काजी दो तीन दिन तक खर्च करने का हुक्म देगा, ज्यादा का नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा अरसे तक इस जानवर पर खर्चा किया जाएगा फिर तो वो खर्चा जानवर की असल कीमत से भी बढ़ जाएगा, तो जानवर तो गोया बिल्कुल हलाक ही हो गया भाई। कालू फुकहा फरमाते हैं इन नमा यामुरु बिल इन्फाक यौमैनी औ सलासता अय्यामिन के काजी हुक्म दे खर्च करने का दो दिन या तीन दिन का, अला कदरी मा यारा जितनी काजी की राय हो, रजा अय्या जहारा मालिकुहा ये उम्मीद करते हुए कि इसका मालिक जाहिर हो जाए, फैदा लम यजहर जब उसका मालिक जाहिर न हुआ, यामुरु बिबैइहा तो काजी हुक्म दे देगा इस लुकते को बेचने का, लिअन्न दारतिन नफकति मुस्तअसिलतुन भाई दर्रा या दुर्रु और दर्रा या दिर्रु उसी से इसमें फाइल है दारतुन भाई इसमें फाइल है मुअन्नस है भाई गोलताबी है आखिर में, और दर्रा या दुर्रु और दर्रा या दिर्रु का माना है कसीर होना, और मुस्तअसिलतुन इस्तअसला यस्तअसिलु का माना है किसी चीज को हलाक कर देना खत्म कर देना। कहते हैं लिअन्न दारतन नफकति इसलिए क्योंकि नफके का कसीर हो जाना मुस्तअसिलतुन ये तो उस जानवर को ही हलाक कर देगा उसकी सारी कीमत खत्म हो जाएगी तो मालिक का तो नुकसान होगा, फला नजर फिल इन्फाकी मुद्दतम मदीदतन लिहाजा कोई शफकत नहीं है लंबी मुद्दत तक खर्च करने में,
قال رضی اللہ تعالی عنہ, اس قال سے مراد صاحب ہدایہ ہیں. قال رضی اللہ تعالی عنہ, صاحب ہدایہ فرماتے ہیں, وفی الاصل, اصل سے مراد مبسوط ہے, وفی الاصل اور مبسوط کے اندر شرط اقامت البینتی, امام محمد رحمہ اللہ نے بینہ قائم کرنے کی شرط لگائی ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قاضی کے پاس کوئی جانور لے آیا کہ یہ مجھے ملا ہے تو قاضی فوراً ہی اس پر خرچ کرنے کا حکم نہ دے بلکہ قاضی اسے بینہ طلب کرے, قاضی اسے بینہ طلب کرے. وجہ یہ کہ اس نے جب جانور کو پکڑا تو دونوں احتمال ہیں, ہو سکتا ہے اس نے مالک کو دینے کا ارادہ کیا ہو, اگر مالک کو دینے کا ارادہ تھا تو اس کو گواہ بنانے چاہیے تھے, ہم نے پہلے بتایا تھا, اور اگر مالک کو دینے کا ارادہ نہیں تو معلوم ہو یہ غاصب ہے, لہذا قاضی اس سے گواہ طلب کرے کہ گواہ لے کر آؤ تم نے مالک کے لیے اس چیز کو اٹھایا تھا, تو گواہ اگر یہ لے آئے گا معلوم ہوا یہ چیز اس نے بطور امانت کے اٹھائی ہے, لہذا قاضی اس پر خرچ کرنے کا حکم دے دے گا. لیکن اگر گواہ نہیں لا سکا معلوم ہوا اس نے چیز کو اپنے لیے اٹھایا ہے, اور اگر اس نے اپنے لیے اٹھایا ہے پھر تو یہ غاصب ہوا, اور غصب کے اوپر تو قاضی خرچ کرنے کا حکم نہیں دے سکتا. تو قال رضی اللہ تعالی عنہ, صاحب ہدایہ فرماتے ہیں, وفی الاصل شرط اقامت البینتی, اور مبسوط کے اندر امام محمد رحمہ اللہ نے بینہ قائم کرنے کی شرط لگائی ہے, وہو صحیح, اور یہی صحیح ہے, لانہ یحتمل ان یکون غصبا فی یدہ, اس لیے کیونکہ احتمال ہے کہ یہ اس کے ہاتھ میں غصب ہو, یعنی اس نے اس جانور کو اپنے لیے پکڑا ہو, ولا یامر فیہ بالانفاق, اور غصب کے اندر تو قاضی خرچ کرنے کا حکم نہیں دے سکتا, وانما یامر بہ فی الودیعتی, اور قاضی خرچ کرنے کا حکم جو ہے وہ تو ودیعت یعنی امانت میں دے سکتا ہے, فلا بد من البین, لہذا بینہ کا ہونا ضروری ہے, لکشف الحال, حالت کو کھولنے کے لیے تاکہ صورتحال کا پتہ چل جائے. تو کہتے ہیں فلا بد من البینتی لکشف الحال, تو اس کی حالت کھولنے کے لیے بینہ کا ہونا ضروری ہے, ولیست البینت تقام للقضاء, اور یہ بینہ جو ہے قاضی کے فیصلے کے لیے قائم نہیں کی جائے گی. یہ بینہ جو قائم کی جا رہی ہے یہ قاضی کے فیصلے کے لیے نہیں ہے بلکہ کشف حال کے لیے ہے, تاکہ معاملے کا پتہ چل جائے کہ یہ چیز اس نے اپنے لیے پکڑی تھی یا مالک کے لیے. بھائی تو کہتے ہیں وَلَيْسَتِ الْبَيِّنَةُ تُقَامُ لِلْقَضَائِ, اور یہ بینہ جو ہے یہ قاضی کے فیصلے کے لیے قائم نہیں کی جا رہی, وَإِنْ قَالَ, اور اگر اس شخص نے کہا, لَا بَيِّنَةَ لِي, کہ میرے پاس تو کوئی بینہ نہیں ہے, یقول القاضی لہو, تو قاضی اس سے کہے گا, انفق علیہ ان کنت صادقا فیما قلتا, انفق علیہ کہ تو اس پر خرچ کر, ان کنت صادقا اگر تو سچا ہے, فیما قلتا اس میں جو تو نے کہا ہے, یعنی قاضی اسے کیا کہے گا کہ اگر تو نے جو کہا ہے اگر تو سچا ہے تو اس پر خرچ کر. تو دیکھو یہاں پر بھی جب اس کے پاس بینہ نہیں ہے تو قاضی اسے خرچ کرنے کا حکم نہیں دے رہا بلکہ معاملہ اسی کے اوپر ڈال رہا ہے, اگر تو نے سچ کہا ہے تو اس پہ اوپر خرچ کر. تو لہذا اب اس آدمی نے اگر مالک کے لیے پکڑا ہے تو وہ خرچ کرے گا اور پھر مالک پر رجوع کر لے گا, اور اگر اس نے اپنے لیے پکڑا تھا تو پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا. بھائی تو کہتے ہیں وَإِنْ قَالَ لَا بَيِّنَةَ لِي, اور اگر اس نے کہا میری کوئی بینہ نہیں ہے, يَقُولُ الْقَاضِي لَهُ, تو قاضی اسے کہے گا, انفق علیہ ان کنت صادقا فیما قلتا, کہ اس لقطے پر خرچ کرو اگر تم سچے ہو اس بات میں جو تم نے کہی ہے, حَتَّى تَرْجِعَ عَلَى الْمَالِكِ إِنْ كَانَ صَادِقًا, یہاں تک کہ وہ پھر مالک پر رجوع کرے گا اگر وہ سچا ہوا, وَلَا يَرْجِعَ إِنْ كَانَ غَاصِبًا, اور وہ رجوع نہیں کر سکتا اگر وہ غاصب ہوا. وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ, یہاں الکتاب سے مراد قدوری ہے, وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ, اور صاحب قدوری کا جو قول آیا کتاب میں یعنی اوپر متن کے اندر, وَجَعَلَ النَّفَقَةَ دَيْنًا عَلَى صَاحِبِهَا, یہ جو اوپر آخری متن گزرا تھا, وَإِنْ كَانَ الْأَصْلَحُ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا, اور اگر اس لقطے پر خرچ کرنا بہتر ہوا, أَذِنَ فِي ذَلِكَ, قاضی اس کی اجازت دے گا, وَجَعَلَ النَّفَقَةَ دَيْنًا عَلَى مَالِكِهَا, اور اس نفقے کو مالک پر دین قرار دے دے گا. تو اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں. कहते हैं वह कौलहू फिल किताबी, और साहिब कुदूरी का कौर जो उनकी किताब मुख्तसर में आया कि वजह अलन न फकता दैनन अला साहिबिहा इशारतुन, इस कौल के अंदर इशारा है इला अन्नहू इन्नमा यर्जिउ अलल मालिकी बादमा हजरा, इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि यह मुल्तकी जो है यह मालिक पर रुजो करेगा बादमा हजरा, बाद उसके जब मालिक हाजिर हो जाए। वलम तुबाइल लुकततु, इस हाल में कि लुकता बेचा ना गया हो। भाई मैंने आपको बतलाया था अगर लुकता बेचने की जरूरत पेश आ गई तो फिर मालिक पे रुजो नहीं करेंगे बल्कि उसी लुकते के समन में से ये अपना दैन वसूल कर लेगा। तवज्जो है, ये जो ऊपर मतन में आया कि ये मुल्तकित जो है मालिक पर रुजो कर लेगा, ये उस सूरत में है जब अभी लुकता ना बेचा हो और मालिक आ जाए तो फिर अब ये मालिक पर रुजो कर सकता है। भाई तो कहते हैं ये जो साहिब कुदूरी का कौल था इशारतुन, इसमें इस बात की तरफ इशारा है इला अन्नहु इन्नमा यर्जिउ अलल मालिकी बादमा हजारा, कि ये मालिक पर रुजू करेगा बाद उसके जब मालिक हाजिर हो जाए। वलम तुबाइल लुकततु, और लुकता अभी बेचा न गया हो फिर रुजू करेगा। और आगे देखिए भाई इदा शरत अल काजी रुजू अलल मालिकी, ये इजा ये मुतालिक है, ये जो अभी चंद लफ्ज पीछे आया था कि इशारा है इला अन्नहु इन्नमा यर्जिउ अलल मालिकी, कि यह मालिक पर रुजू कर सकता है, यह मालिक पर रुजू कर सकता है। कब? इदा शरत अल काजी रुजू अलल मालिकी, जब काजी ने भी मालिक पर रुजू की शर्त लगाई हो। भाई अगर काजी ने सिर्फ यह कहा कि तुम इस पर खर्च करो तो याद रखो इस सूरत में यह मालिक पर रुजू नहीं कर सकता, क्योंकि काजी ने यह नहीं कहा कि मालिक पर दैन होगा तुम बाद में मालिक से ले लेना। तो अगर काजी ने सिर्फ खर्च करने का कहा है तो फिर मालिक पर रुजू नहीं कर सकता, और अगर काजी ने रुजू करने की भी शर्त लगाई है कि तुम इस जानवर पर खर्च करो बाद में मालिक से ले लेना तो अब यह मालिक पर रुजू कर सकता है। तवज्जो है, फिर तर्जमा देख लीजिए। पीछे इन्होंने जिक्र किया कि इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह का ये जो कौल है इसमें इशारा है इस बात की तरफ क्या नहु इन नमा यर्जु अलल मालिक बाद मा हजरा वलम तुबाई लुकततु, के बाद उसके के जब मालिक हाजिर हो जाए और लुकता बेचा नहीं गया तो ये मालिक पर रुजू कर सकता है। इदा शरत अल काजी रुजू अलल मालिक, जब काजी ने मालिक पर रुजू की शर्त लगाई हो। वहादिही रिवायतुन, और ये एक रिवायत है। एक रिवायत के मुताबिक तो काजी ने सिर्फ खर्च करने का कह दिया तो फिर भी मालिक पर रुजू कर सकता है, लेकिन दूसरी रिवायत के मुताबिक अगर काजी ने यह शर्त लगाई है कि खर्च करो और फिर मालिक से ले लेना तो फिर ही मालिक पर रुजू कर सकता है। तो कहते हैं वहाद ही रिवायत, ये एक रिवायत है। वह हुवल असहु, और यह ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है, यानी काजी ने ना कहा हो फिर भी रुजू कर सकता है, ये रिवायत भी सही है, लेकिन लेकिन ज्यादा सही ये है कि काजी ने कहा हो तो फिर रुजू कर सकता है। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं फईदा हाजारा यानिल मालिका, के जब हाजिर हो जाए यानी के मालिक फलिल मुल्तकी अयम नाहा मिनहू हता युहजीरा नफकता। भाई मालिक आ गया उस जानवर को लेने के लिए तो क्या मुल्तकित इस हैवान को रोक सकता है नफका वसूल करने के लिए? कहते हैं हां, मुल्तकित जो है उस लुकते को रोक सकता है जब तक अपना कर्जा वसूल ना कर ले, वो जो उसने इस पर माल खर्च किया है। भाई कहते हैं फईदा हजरा यानिल मालिका, और जब वो हाजिर हो जाए यानी के मालिक फलिल मुल्तकी अयमनाहा मिनहू, तो मुल्तकी के लिए जायज है कि उस लुकते को मालिक से रोक ले। हत्ता युहजीरा नफकता, यहां तक कि मालिक जो है वो नफका हाजिर कर दे। लिअन्नहु यहया बिनफकती ही, इसलिए क्योंकि लुकता जो है वो जिंदा है बिनफकती ही इस मुल्तकित के नफके की वजह से। फसारा का अन्नहु इस्तफाद अल मिल का मिन जिहती ही। भाई इधर देखिए, ये जो लुकता है ये उस मुल्तकित के नफके की वजह से जिंदा रहा है, अगर वो नफका ना देता तो ये जानवर मर जाता। तो जब मुल्तकित ये लुकता मालिक को दे रहा है तो ये इसी तरह है गोया व मालिक को इस वक्त इस चीज का मालिक बना रहा है, मालिक को गोया नई मिल्कियत मिल रही है अपने लुकते पर, इसलिए क्योंकि ये जो लुकता जिंदा रहा है ये इस मुल्तकित के खर्चे की वजह से जिंदा रहा है। तो मुल्तकित जब ये लुकता मालिक के हवाले कर रहा है तो यूं समझो ये नई मिल्कियत मालिक को हासिल हो रही है। अगर मुल्तकित इस पर खर्चा न करता तो ये तो हलाक हो गया था, तो गया मुल्तकित ने इस जानवर को जिंदगी दी है, उसने इसको जिंदा किया है, तो ये जो मालिक को दे रहा है गया मालिक को नई मिल्कियत मिल रही है अपने माल पर, तो ये मबीए की तरह हो गया। जैसे कोई शख्स कोई चीज खरीदता है तो बैग की वजह से उसको मबीए पर मिल्कियत मिल जाती है, तो यहां भी यूं समझो गोया मालिक को अपने लुकते पर नई मिल्कियत मिल रही है। तो ये किसकी तरह हुआ? मबीए की तरह। और जैसे मबीए के अंदर बाय को हक होता है, वो मबीए को रोक ले समन वसूल करने के लिए, तवज्जो है। जैसे एक आदमी दूसरे से बैक करता है तो इजाब और कबूल करते ही मुश्तरी मबिया का मालिक बन जाता है। अब मुश्तरी कहता है लाओ भाई हमने इजाब और कबूल कर लिया, ये मबिया मेरे हवाले करो, तो बाय कह सकता है नहीं तुम्हारे जिम्मे समन आ गए हैं, तुम पहले समन मेरे हवाले करो फिर मैं मबिया तुम्हारे हवाले करूंगा। तो जैसे बाय को समन के लिए मबिये को रोकने का हक है, तो यहां पर भी ये जो मुल्तकित है इसकी वजह से लुकते को नई जिंदगी मिली है और मालिक को गोया अपने लुकते पर नई मिल्कियत मिल रही है, तो लिहाजा यहां पर भी ये मुल्तकित इस लुकते को रोक सकता है अपना नफका वसूल करने के लिए। तो कहते हैं लिअन्नहु यहया बिनफकति ही, इसलिए क्योंकि ये लुकता जो है ये जिंदा है उस मुल्तकित के नफके की वजह से। फसारा का अन्नहु स्तफादल मिल का, तो ये इसी तरह हो गया जैसे कि मालिक ने मिल्कियत हासिल की है, मीन जिहती ही मुल्तकित की तरफ से, मालिक को मिल्कियत मिल रही है मुल्तकित की जानिब से। फअशबहल मबीआ, तो ये लुकता जो है मबीए के मुशाबे हो गया, तो उसके अंदर बाय को समन रोकने का हक है, तो यहां पर भी मुल्तकित को लुकता रोकने का हक है अपना नफका वसूल करने के लिए। वअक़रबु मिन ज़ालिका रादुल आबिक, आबिक कहते हैं भागा हुआ गुलाम। रादुन इसमें फाइल है, रद्दा या रुद्दू का माना रद्द करना, और इसमें फाइल क्या आएगा? रादुन वापस करने वाला। कहते हैं वअक़रबु मिन ज़ालिका, और इसके ज्यादा करीब जो है रादुल आबिकी, भागे हुए गुलाम को वापस करने वाला है। भाई आगे भागे हुए गुलाम के मसाइल जिक्र होंगे, किताबुल इबाक आ रही है एक सफे के बाद, भाई वहां साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि अगर कोई शख्स किसी के गुलाम को पकड़ कर ले आए सफर की मसाफत से, यानी तीन दिन या इससे ज्यादा की मसाफत से कोई शख्स किसी के गुलाम को पकड़ कर ले आए, एक आदमी का गुलाम भाग गया था और सफर की मसाफत यानी तीन दिन या इससे ज्यादा की मसाफत से कोई आदमी इस भागे हुए गुलाम को पकड़कर मालिक के पास लाता है, तो याद रखो मालिक को अब उसको खर्चा देना पड़ेगा, और वो 40 दिरहम है भाई। कितना देना पड़ेगा? 40 दिरहम देने पड़ेंगे भाई। और वो गुलाम को वापस लाने वाला वो उस गुलाम को रोक सकता है जब तक अपने 40 दिरहम वसूल न कर ले भाई, तवज्जो है। तो यहां भी इसी तरह है, कहते हैं वह अकरबु मिन ज़ालिका रादुल आबिकी, और इसके ज्यादा करीब जो है वो शख्स है जो भागे हुए गुलाम को वापस करने वाला है। فَإِنَّ لَهُ الْحَبْسَ, इसलिए क्योंकि उस वापस करने वाले को उस गुलाम को रोकने का हक है। لِاسْتِفَاءِ الْجُعْلِ, जुअल कहते हैं मजदूरी और उजरत भाई, لِاسْتِفَاءِ الْجُعْلِ अपनी उजरत वसूल करने के लिए। लिमा ज़करना, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया, यानी जिस तरह ये भागे हुए गुलाम को लाने वाला इसकी वजह से मालिक को गुलाम मिल गया, वरना तो गुलाम उसके हाथ से निकल गया था, यूं समझो उसके लिए गुलाम एक लिहाज से हलाक ही हो गया था, तो इस लाने वाले की वजह से उस मालिक को गोया नई मिल्कियत मिल गई गुलाम के ऊपर। तो यहां पर भी इसी तरह है, इस मुल्तकित के नफके की वजह से उस लुकते को गोया नई जिंदगी मिल गई है भाई, लिहाजा वो लुकते को रोक सकता है अपना नफका वसूल करने के लिए। ये माना है। फिर तर्जमा देख लीजिए, فَإِنَّ لَهُ الْحَبْسَ, इसलिए क्योंकि भागे हुए गुलाम को वापस लाने वाले को उस गुलाम को रोकने का हक है। لِاسْتِفَاءِ الْجُعْلِ, अपनी उजरत वसूल करने के लिए। لِمَا ذَكَرْنَا, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि उसकी वजह से नई जिंदगी मिली है। सुम्मला यस्कुतु दैनुन नफकति बिहलाकिहि फि यदिल मुल्तकिति क़ब्ल अल हब्स। अच्छा भाई, सूरत यह कि मालिक लुकता को लेने के लिए आ गया और वो लुकता उस मुल्तकित के पास हलाक हो गया,
तो क्या उस पर जमान आएगा या नहीं। तो हम पहले बयान कर चुके कि ये अगर गवाह इसने बनाए हैं तो ये अमानत के हुक्म में है। लिहाजा अगर लुक्ते को रोकने से पहले लुक्ता इसके पास हलाक हुआ है तो इस पर जमान नहीं आएगा, और अगर इसके रोकने के बाद इसके पास हलाक हुआ है तो फिर इस पर जमान आएगा
जी।
क्या माना? माना यह है, मालिक आया कि लाओ मेरे जानवर हवाले करो, और वो कहता है कि नहीं पहले मेरे खर्चा दो फिर मैं हैवान दूंगा, तो मालूम है इसने हैवान को रोक लिया। अब अगर इसके पास लुक्ता हलाक हुआ रोकने के बाद तो इस पर जमान आएगा भाई, और अगर रोकने से पहले इसके पास हलाक हो गया कि मालिक ने कहा कि लाओ भाई वो मेरा हैवान मेरे हवाले करो और इसने आदमी को भेजा कि जाओ इसका हैवान ले आओ, इसने कोई इनकार वगैरह नहीं किया लेकिन वो हैवान मालिक को देने से पहले ही हलाक हो गया, तो इस सूरत में जमान नहीं आएगा भाई। कहते सुम मलायस कुतु दैन उन नफकती भी हलाक ही, फिर जो नफके का दैन है वो साकित नहीं होता उस लुकते के हलाक हो जाने की वजह से। फी यदिल मुलतकी, मुलतकित के कब्जे में, मुलतकित के कब्जे में लुकते के हलाक हो जाने की वजह से जो नफके का दैन है वो साकित नहीं होता। कहते हैं सुम्मा ला यस्कुतु दैन उन नफकती, फिर नफके का जो दैन है वो साकित नहीं होता। भी हलाक ही फी यदिल मुलतकिती, जब लुकता हलाक हो जाए मुलतकित के कब्जे में, कबल अल हब्सी रोकने से पहले, वयस्कुतु और वो दैन साकित हो जाता है, इदा हलक बाद अल हब्सी जब वो लुकता हलाक हो जाए रोकने के बाद, लिअन्नहु यसीर बिल हब्सी शबीहर रहनी, इसलिए क्योंकि रोकने की वजह से वो रहन के मुशाबे हो गया, रहन के मुशाबे हो गया भाई। भाई आप पढ़ चुके हैं कि रहन जो है बतौर जमानत के किसी के पास रखवाया जाता है। मसलन एक आदमी दूसरे के पास गया कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो उसने कहा कि 10 लाख रुपए मैं आपको दे दूं लेकिन मुझे एतमाद नहीं, पता नहीं आप मेरा कर्ज वापस करते हैं या नहीं, आप यूं करें मेरे पास कोई चीज बतौर रहन के मेरे पास रखवा दें। चुनांचे उस आदमी कर्ज लेने वाले ने अपनी गाड़ी बतौर रहन के रखवा दी और 10 लाख रुपए कर्ज उसने ले लिया। और आप जानते हैं कि रहन जो है अगर वो मुर्तहिन के पास हलाक हो जाए तो उसी के बकदर देन गोया उसने वसूल कर लिया। फर्ज करें अगर वो गाड़ी भी 10 लाख की थी और उसने कर्जा भी 10 लाख लिया है, तो अगर मुर्तहिन के पास ये गाड़ी हलाक हो गई तो यूं समझेंगे कि गोया मुर्तहिन ने अपना कर्जा वसूल कर लिया है। तवज्जो है? तो यहां पर भी मुलतकित ने जब लुकते को अपने पास रोक लिया तो ये रहन के दर्जे में हो गया, रहन के मुशाबे हो गया, और रहन जब मुर्तहिन के पास हलाक हो जाए तो उसमें जमान आता है, तो लिहाजा यहां पर भी जमान आएगा और वो जो नफके का दैन है वो साकित हो जाएगा, वो नफके का जो दैन है वो साकित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये माना है वयस्कुतु इदा हलका बादल हब्सी, और वो नफके का दैन साकित हो जाएगा जब वो लुकता रोकने के बाद हलाक हुआ, लिअन्नहु यसीरु बिल हब्सी, इसलिए क्योंकि वो लुकता जो है रोकने की वजह से हो गया, शबीहर रहनी रहन के मुशाबे, वो रहन के मुशाबे हो गया। तो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अगर यह लुकता रोकने के बाद हलाक हुआ है तो दैन नफका साकित हो जाएगा, और अगर रोकने से पहले हलाक हुआ है तो फिर दैन नफका साकित नहीं होगा। तो बाद मुहशी हजरात ने लिखा है कि यह इमाम जुफर रहमला के नजदीक ऐसा है कि अगर लुकता रोक लेगा तो फिर यह रहन के मुशाबे हो गया, लिहाजा इसमें जमान आएगा। जबकि हमारे तीनों अइमा के नजदीक चाहे रोकने से पहले लुकता हलाक हो चाहे रोकने के बाद लुकता हलाक हो किसी सूरत के अंदर भी दैन नफका साकित नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये लुकता है ये रहन नहीं है, लिहाजा इस पर रहन वाला हुक्म जारी नहीं होगा। भाई आगे देखिए भाई, काला और साहिब कुदूरी फरमाते हैं व लुकतुल हिल वल हरामी सवा उन, और हिल और हराम दोनों का लुकता बराबर है। हिल और हराम किसे कहते हैं भाई ये समझ लीजिए, याद रखो बैतुल्लाह जमीन पर अल्लाह की इबादत के लिए बनाया जाने वाला पहला घर है, तो जैसे बैतुल्लाह की बे इंतहा इज्जत और हुरमत है, इसी तरह इस बैतुल्लाह के इर्द गिर्द की जगह जो है उसकी भी ताजीम का हुक्म दिया है शरीयत ने। चुनाचे बैतुल्लाह के इर्द गिर्द का कुछ इलाका जो है यह हरम कहलाता है, तो बैतुल्लाह के चारों तरफ का आसपास का जो इलाका है वह हरम कहलाता है और इसकी बाकायदा हुदूद हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई थी। भाई बास तरफ यह बैतुल्लाह से 5-6 मील के फासले तक है और बास तरफ यह 10-15 मील के फासले तक ये हरम की हुदूद हैं भाई। और जिस तरह बैतुल्लाह की बेइंतहा इज्जत और हुरमत है, इसी तरह बैतुल्लाह के आसपास की इस जगह की भी बेइंतहा इज्जत और हुरमत है। इस हरम के अंदर शरीयत ने किसी भी चीज को किसी किस्म का नुकसान देने से मना किया है, यहां तक कि इस हरम के हुदूद में शिकार खेलना भी मना है। इसी तरह इस हरम के हुदूद के अंदर दरख्तों वगैरह को काटना भी मना है भाई। तो यह बैतुल्लाह के इर्द गिर्द का जो इलाका है उसके करीब करीब का यह हरम कहलाता है। फिर याद रखो इस हरम से बाहर एक और हद है जिसको हिल कहते हैं और वो बैतुल्लाह के चारों तरफ जो है बास तरफ 100-200 किलोमीटर बास तरफ 300-400 किलोमीटर दूर तक जो है वो हुदूद फैली हुई हैं। तो ये हरम के इर्द गिर्द का जो इलाका है ये हिल कहलाता है और इससे बाहर सारी दुनिया जो है वो आफाक कहलाती है। ये तफसील हज के अंदर बयान होती है भाई। बैतुल्लाह के करीब वाला इलाका हरम और वहां के रहने वाले अहले हरम, और बैतुल्लाह के इर्द गिर्द जो बड़ी हुदूद है जरा वो इलाका हिल और वहां के रहने वाले अहले हिल कहलाते हैं और हिल से बाहर के रहने वाले आफाकी कहलाते हैं। तो यहां पर हिल और हरम का जिक्र आया तो यहां हिल से मुराद वो खास हिल का इलाका नहीं है बल्कि हरम के अलावा बाकी सब इसके अंदर आ गए। तो हिल से क्या मुराद हुआ? गैर हरम यानी हरम के अलावा। तो सूरत मसला ये एक वो लुकता है जो हरम के अंदर किसी को मिले और एक वो लुकता है जो हरम के अलावा किसी और जगह के अंदर मिले, तो इंदल अहनाफ दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे गैर हरम के लुकते के अंदर उसमें तशहीर करवाई जाएगी और फिर अगर मालिक का पता नहीं चलता तो कुछ मुद्दत के बाद उसको फिर सदका कर दिया जाएगा, इसी तरह हरम के लुकते का भी यही हुक्म है। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हरम के लुकते को सदका करने की इजाजत नहीं, उसमें हमेशा तशहीर करवाते रहेंगे यहां तक कि असल मालिक का पता चल जाए जी। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह लुकतुल हिल वल हरमी सवा उन, और हिल और हरम दोनों का लुकता बराबर हैं। वह काल शाफी रहमहुल्लाह ताला, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं यजिबु तारीफ फी लुकतुल हरमी, के हरम के लुकते के अंदर तशहीर वाजिब है इला अय्यजी असाहिबुहा, यहां तक कि इस लुकते का मालिक आ जाए। लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलामु फिल हरमी, इस वजह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम के बारे में फरमाया है वला यहिल्लु लुकततुहा इल्ला लिमुनशिदिहा, यह हदीस है। वला यहिल्लु लुकततुहा, कि हरम का लुकता हलाल नहीं है इल्ला लिमुनशिदिहा मगर उसके ऐलान करवाने वाले के लिए, यानी जो उसकी तशहीर करवाए। मालूम हुआ हरम के लुकते में हमेशा तशहीर ही करवाई जाएगी। हदीस समझ में आ गई? तो वो फरमाते हैं हदीस में आया है वला यहिल्लु लुकततुहा इल्ला लिमुनशिदिहा, कि हरम का लुकता हलाल नहीं है यानी उसका उठाना हलाल नहीं है इल्ला लिमुनशिदिहा मगर उसकी तशहीर करवाने वाले के लिए। वलना, अब हमारी दलील आ गई, हमारे नजदीक हराम और गैर हराम सब लुकते बराबर हैं हुक्म के एतबार से। वलना, और हमारी दलील जो है कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है कि आपने फरमाया ए आरिफ इफा सहा वबिका अहा सुम्मा आरिफ हा सनतन। ए आरिफ, आराफा या आरिफ के माने होते हैं पहचान लेना। इफास भाई स्वाद है आखिर में, इफास कहते हैं वो जो लुकते का जो जर्फ है यानी या चमड़ा या कपड़ा वगैरह जिसके अंदर लुकता मौजूद था तो उसको क्या कहते हैं इफास भाई, वो जो जर्फ है उस लुकते का। और विका भाई, विका उन कहते हैं डोरी को जिसके साथ उस लुकते को बांधा गया था। मसलन किसी को लुकता मिला है, थैली के अंदर दिरहम मिले, तो वो जो थैली है वो है इफास
और थैली का मुंह जिस डोरी से बांधा गया है वो है विका। भाई किसी को लुकता मिला तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ए आरिफ इफासहा व विका आहा, कि उस लुकते की थैली और उसकी डोरी को अच्छी तरह पहचान लो, सुम्मा आरिफ हासनतन, फिर उसकी तशहीर करो एक साल तक। यानी जिसको लुकता मिला है वो लुकते को तो घर पर रख लेगा लेकिन उसकी डोरी और थैली को अच्छी तरह पहचान लेगा ताकि कोई आकर निशानी बयान करे तो इसको पता चले कि ये इसी का है। तो वलाना हमारी दलील जो है कौलहु अलैहि सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहि सलाम का कौल है ए अरिफ इफा सहा वविका आहा, कि उस लुकते की थैली और उसकी डोरी को पहचान लो, सुम्मा अरिफ हा सनतन, फिर उसकी तशहीर करो एक साल तक। तो इस हदीस में यह आया है मिन गैरि फसलिन, इसमें कोई फर्क नहीं किया गया। इस हदीस में हराम और गैर हराम के लुकते में कोई फर्क नहीं किया गया, मुतलकन जिक्र है कि लुकते की एक साल तक तशहीर का हुक्म दिया गया है। तो कहते हैं मिन गैरि फसलिन, बगैर किसी फर्क के, वली अन्नहा लुकततुन। अब यहां से दूसरी अकली दलील जिक्र कर रहे हैं कि हराम के लुकता भी आम लुकते की तरह है, वली अन्नहा लुकततुन, और इसलिए क्योंकि यह भी लुकता ही है, यह हराम का लुकता भी यह लुकता ही है। वफिर तसद्दुकी बाद मुद्दती तारीफी, और तशहीर की मुद्दत के बाद सदका करने में इबका उमिल किल मालिक मिन वजहीन, इसके अंदर मालिक की मिल्कियत को बाकी रखना है बाज एतबार से। भाई जब अगर एक साल तक तशहीर के बाद उस लुकते को हम सदका करेंगे तो मालिक की मिल्कियत बाज एतबार से अभी भी बाकी है क्योंकि उसको सवाब मिल गया, उसको सवाब मिल गया है। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वली अन्नहा लुकततुन, इसलिए क्योंकि हराम का लुकता भी लुकता ही है। वफी तसद्दुकी बाद मुद्दती तारीफी, और तशहीर की मुद्दत के बाद सदका करने में इबका उमिल किल मालिक मिन वजहीन, इसमें मालिक की मिल्कियत को बाकी रखना है बाज एतबार से। फयम लिकुहू, तो फकीर इसका मालिक बन जाएगा, कमाफी साइरिहा, जैसे कि बाकी लुकतों में होता है। यहां पर भी सदका करेंगे तो फकीर उसका मालिक बन जाएगा। व तावील उमा रुविया, और तावील उस हदीस की जिसको रिवायत किया गया, वो जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया था, हदीस जिक्र की थी कि हुजूर फरमाते हैं वला यहिल्लु लुक्ततुहा इल्ला लिमुंशिदिहा, कि हरम का लुकता उठाना जायज नहीं मगर तशहीर करवाने वाले के लिए ही। तो उसका हम जवाब देते हैं, कहते हैं वह तावील उमा रुविया, और तावील उस हदीस की जिसको रिवायत किया गया वो ये है कि अन्नहु ला यहिल्लुल तिकातु, कि हरम के लुकते को उठाना हलाल नहीं है, इल्ला लितारीफी, मगर तशहीर के लिए ही। उस हदीस का माना हदीस में क्या था, वला यहिल्लु लुक्ततुहा इल्ला लिमुंशिदिहा, माना यह है हरम के लुकते को उठाना जायज नहीं है मगर तशहीर के लिए, इस हदीस का यह माना है। इस पर इश्काल होता है कि यह तशहीर तो हर लुकते में होती है चाहे हरम का हो या गैर हरम का जी। तो आप इस हदीस का माना कर रहे हैं कि लुकते को वो ही उठाए जो इसकी तशहीर करवाए, यह तो हर लुकते में होता है, तो फिर हरम की तख्सीस की क्या वजह है, हुजूर अलैहि सलाम ने तो हरम के लुकते के बारे में फरमाया है। तो हम उसका भी जवाब देते हैं कि हरम का खास तौर पर हुजूर अलैहि सलाम ने इसलिए जिक्र फरमाया क्योंकि किसी के जहन में शुबा आ सकता है कि हराम के अंदर तो सारा साल मुसाफिर ही आते रहते हैं, कोई हज के लिए आ रहा है, कोई उम्रे के लिए आ रहा है, फिर वापस जा रहा है, तो शायद किसी के जहन में ख्याल आए कि हराम के लुकते के अंदर तशहीर की जरूरत ही नहीं है, बस फौरन ही सदका कर दो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस वहम को दूर फरमाया कि नहीं, हराम के लुकते में भी क्या करना पड़ेगा, तशहीर करना पड़ेगी। भाई तो कहते हैं वह तावील उमा रुविया, और तावील उस हदीस की जिसको रिवायत किया गया है कि अन्नहु ला यहिल्लु लिल्तिकातु इल्ला लितारीफी, के हरम का लुकता उठाना हलाल नहीं है मगर तशहीर के लिए ही। वह तख्सीसु बिल हरमी, और हरम की जो तख्सीस की गई है लिबयानी अन्नहु ला यस्कुतु तारीफु फीही, वो ये बयान करने के लिए है कि हरम के लुकते के अंदर भी तशहीर साकित नहीं होती। लिमकानी अन्नहु लिलगुरबा इज़ाहिरन, गुरबा जमा है गरीब की, और गरीब का माना है मुसाफिर। ले मकानी, मकान मैंने आपको बताया था कि मस्दर है और यह बमाने वजूद के है, और वजूद कौन सबूत सबका एक ही माना है, लेकिन यहां आप जरा इसको कौन के माना में कर लें, यह मकान बमाने
कौन के है, कान यकून कौनन व मकानन, तो फिर आपके लिए बात जरा वाजे होगी। कहते हैं कि यह बयान करने के लिए कि हराम के लुकते के अंदर भी तशहीर साकित नहीं होती, लि मकानी अन्नहु लिल गुरबा इजाहिरन आई लि कौनी अन्नहु लिल गुरबा इजाहिरन, इसलिए क्योंकि इसका मुसाफिरों के लिए होना जाहिर है, इसलिए क्योंकि इस लुकते का, इसलिए क्योंकि जाहिर यही है यह लुकता मुसाफिरों का है, तो किसी के जहन में आ सकता है यहां तशहीर की जरूरत नहीं, अब फायदा ही कोई नहीं है, यह तो कोई मुसाफिर था जा चुका होगा अब तक, तो इस एहतमाल को दूर फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने। तो यह माना है लि मकानी अन्नहु लिल गुरबा इजाहिरन, इस वजह से कि इसका गुरबा के लिए होना ही जाहिर है। आगे देखिए वह इदा हजार रजुल फुकता, सूरत मसला ये, एक शख्स को लुकता मिला और उसने लोगों के अंदर उसकी तशहीर करवाई और एक शख्स उस लुकते को लेने के लिए आ गया। अब वो जो मालिक आया है उसने लुकते की अलामत कोई बयान कर दी और वो अलामत उसने सही बयान की, मसलन दिरहमों की तादाद बयान कर दी या थैली का रंग बयान कर दिया या वो डोरी का रंग बयान कर दिया, कोई तफसील वगैरह बयान कर दी, सही निशानियां बतला दी, तो क्या मालिक अब उसको लुकता दे सकता है? कहते हैं हां, मालिक के लिए जब उसने निशानियां बता दी हैं तो मालिक के लिए लुकता देना जायज है। अलबत्ता, अलबत्ता वाजिब नहीं है, मालिक पर वाजिब नहीं है, बल्कि मालिक उससे बयना यानी गवाह तलब कर सकता है, तो अगर वो गवाह पेश कर देता है फिर लुकता देना वाजिब हो जाएगा, लेकिन अलामतों की वजह से मालिक के लिए देना तो जायज है लेकिन वाजिब नहीं, हत्ता कि काजी भी उसको मजबूर नहीं कर सकता सिर्फ अलामतों की वजह से। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वह इदा हजरारा जुलून, और जब कोई आदमी हाजिर हो गया, फदा लुकता, उसने लुकते का दावा कर दिया कि यह मेरा है, लम तुदफा इलैही, तो यह लुकता उसके हवाले नहीं किया जाएगा, हत्ता युकीम अल बय्यना, था यहां तक कि वह बय्यना कायम कर दे, फ इन आता अलामतहा, अगर उस आदमी ने लुकते की अलामत दे दी यानी अलामत बयान कर दी, हल्ला लिल मुल्तकित अन यदफअहा इलैही, तो मुल्तकित के लिए जायज है कि ये लुकता उस आदमी को दे दे, वला युजबरु अला दालिका फिल कजाई, और मुल्तकित को मजबूर नहीं किया जा सकता इस पर, फिल कजाई कजा के अंदर यानी सिर्फ अलामत की वजह से मजबूर नहीं किया जा सकता। वकाल मालिक व शाफी रहमहुम अल्लाह तआला युजबरु, और इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमहुम अल्लाह फरमाते हैं कि मुल्तकित को अलामत की वजह से भी मजबूर किया जा सकता है। वल अलामतु, अब अलामत कैसी हो वो साहिब हिदाया वजाहत फरमा रहे हैं, वल अलामतु मिसलु अन युसमिया वजन दराहिमी, और अलामत जैसे कि वो दिरहमों का वजन जिक्र कर देता है, व अददहा और उनकी तादाद जिक्र कर देता है, व विकाअहा और उनकी डोरी जो है उसको जिक्र कर देता है, व विआअहा या उनका जो जर्फ है वो चमड़ा या थैला वगैरह वो बतला देता है। आगे देखिए लहुमा, अब दलील आ गई इमाम मालिक और इमाम शाफई रहमहुमल्लाह की, लहुमा इमाम मालिक और इमाम शाफई रहमहुल्लाह की दलील यह है कि अन साहिबल यद युनाज़िउहु फिल यद, इधर देखिए इमाम मालिक और इमाम शाफई रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यहां पर साहिब कब्जा जो है वो मुल्तकित है, और मुल्तकित भी मान रहा है कि मैं इसका मालिक नहीं हूं, तो मालूम हुआ झगड़ा मालिक होने में नहीं है बल्कि झगड़ा सिर्फ कब्जे के बारे में है, झगड़ा कब्जे के बारे में है, मालिक होने के बारे में झगड़ा हो तो वहां बयीना पेश करना जरूरी होता है। आपके पास एक चीज है, कोई आदमी दावा कर देता है यह चीज मेरी है, तो वहां वो मालिक होने का दावा कर रहा है लिहाजा वहां बयीना जरूरी है, लेकिन यहां मालिक होने का झगड़ा नहीं है सिर्फ कब्जे का झगड़ा है, तवज्जो है, लिहाजा यहां पर बय्यना की शर्त नहीं लगाई जाएगी बल्कि अलामत ही काफी होगी कब्जे को साबित करने के लिए। तो कहते हैं लहुमा, और इमाम शाफई और इमाम मालिक रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन साहिबल यदि युनाज़िउहु फिल यदि, कि साहिब कब्जा जो है वो उस आने वाले आदमी से झगड़ रहा है कब्जे में, वला युनाज़िउहु फिल मिल्की, और वो उसके साथ मिल्कियत के अंदर नहीं झगड़ रहा,
क्योंकि उठाने वाला खुद इकरार कर रहा है मैं इसका मालिक नहीं हूं, यह मुझे रास्ते में मिली है। तो कहते हैं वला युनाज़िउहू फिल मिल्की, और वह मिल्कियत के अंदर नहीं झगड़ रहा। फयुश्तरतुल वस्फ, तो वसफ की शर्त लगाई जाएगी। लिवजूदिल मुनाज़ाति मिन वजहिन, इसलिए क्योंकि झगड़ा बाज़ एतबार से है। मालिक होने के अंदर झगड़ा होता तो फिर तो हर एतबार से झगड़ा था, लेकिन ये तो सिर्फ कब्जे का झगड़ा है, तो बाज एतबार से झगड़ा है, बाज एतबार से झगड़ा नहीं। लिहाजा सिर्फ वसफ यानी अलामत बयान करना ही काफी है, बैना की शर्त नहीं लगाई जाएगी। तो कहते हैं फयूश तरतुल वसफ, तो वसफ की शर्त लगाई जाएगी कि वो लुकते का वसफ यानी अलामत बयान करे। लिवजूद इल मुनाज़ाति मिन वजहिन, इसलिए क्योंकि झगड़ा बाज एतबार से पाया जा रहा है। वला तुश्तरतु इकामतुल बय्यिनति, और बय्यिना कायम करने की शर्त नहीं लगाई जाएगी। लिअदमिल मुनाज़ाति मिन वजहिन, इसलिए क्योंकि बाज एतबार से झगड़ा नहीं है, यानी मालिक होने के एतबार से तो झगड़ा नहीं है। वलना, अब हमारी दलील आ गई। हम कहते हैं कि यहां पर कब्जा ही मकसूद है, यहां पर कब्जा ही मकसूद है, तो यह कब्जा भी मिल्कियत के मुशाबे हो गया। जैसे मिल्कियत मकसूद होती है, यहां पर कब्जा मकसूद है। जैसे देखो, एक शख्स किसी का मुदब्बर गसब कर ले, एक शख्स किसी का मुदब्बर गसब कर ले, आप जानते हैं मुदब्बर इंतकाल मिल्क को कबूल नहीं करता, वो किसी को बेचा नहीं जा सकता, किसी को हिबा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने आजाद होना है अपने मालिक के मरने के बाद। तो मुदब्बर इंतकाल मिल्क को कबूल नहीं करता, इसको कोई आदमी गसब करके ले गया, छीन कर ले गया भाई। तो यहां पर अब मालिक जो है उससे वो मुदब्बर वापस लेना चाहता है, तो मालिक को बय्यना कायम करना पड़ेगी। अगरचे यहां पर झगड़ा मिल्कियत में नहीं है, सिर्फ कब्जे के अंदर झगड़ा है जी। क्योंकि गासिब उस मुदब्बर का मालिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुदब्बर इंतकाल मिल को कबूल नहीं करता। तो यहां पर भी मालिक का कब्जा जो है वो मुदब्बर पर मिल्कियत के बारे में नहीं है, बल्कि कब्जे के बारे में है। फिर भी वहां उसको बय्यना कायम करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि वहां कब्जा ही मकसूद है। तवज्जो है, तो यहां पर भी जब कब्जा ही मकसूद है और यह कब्जा मिल्कियत की तरह हो गया, और मिल्कियत के लिए तो बय्यना चाहिए होती है, लिहाजा कब्जे के लिए भी बय्यना चाहिए होगी। वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन अलियद हक मकसूदन, कि यह कब्जा जो है यह ऐसा हक है जो मकसूद है। कल मिल्की, जैसे कि मिल्कियत होती है कि वो भी मकसूद होती है। फला यस्तहिक इल्ला बिहुज्जतिन, लिहाजा मुद्दई इस कब्जे का मुस्तहिक नहीं होगा। इल्ला बिहुज्जतिन, मगर हुज्जत के जरिए, दलील के जरिए। वहुअल बय्यिनतु, और वो बय्यिना है। एतबारम बिल मिल्की, मिल्कियत पर कियास करते हुए। इल्ला अन्नहु तहिल्लु लहु दफ़ु इंद इसाबतिल अलामति, तो सवाल पैदा होता है कि ए अहनाफ, अगर ये झगड़ा सिर्फ कब्जे के बारे में है तो लिहाजा इसके अंदर बय्यिना जरूरी है, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि आने वाला अगर अलामतें ठीक बतला देता है फिर भी मालिक के लिए जायज है लुकता देना? अगर बय्यिना जरूरी है फिर तो बगैर बय्यिना के देना जायज ही नहीं होना चाहिए। तो उसका भी जवाब देंगे कि हां, कयास तो यही तकाजा करता है कि बगैर बय्यिना के जायज ही नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां एक और हदीस आ गई, लिहाजा हमने कयास को तर्क कर दिया और हदीस पर अमल किया भाई। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु तहिल्लु लहु दफ़ु, मगर यह के मालिक के लिए उसको देना हलाल है। इंद इसाबतिल अलामती, अलामत के सही होते वक्त। लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलामु, बवजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के कि आपने फरमाया फइन जा साहिबुहा, अगर इस लुकते का मालिक आ गया। वआरफा इफासहा वअददहा, और उसने पहचान लिया उस लुकते के थैली को। वअददहा, और उसकी तादाद को यानी उन दिरहमों की तादाद को। फदफअहा इलैही, तो उसे उसके हवाले कर दो, तो वो लुकता उस आने वाले के हवाले कर दो। तो यहां पर अमर आया फदफअहा इलैही, उसने अलामतें सही बयान कर दी तो ये लुकता उसके हवाले कर दो। तो इस अमर को हमने इबाहत पर महमूल किया। अमर तो असल में आता है वजूब के लिए, लेकिन यहां अमर हमने इबाहत पर महमूल कर लिया अब मुल्तकिद के लिए जायज हो गया कि वो आने वाले को ये लुक्ता दे सकता है। भाई क्या वजह है, अमर आया है वजूब के बजाय आप इबाहत के क्यों कायल हुए? तो हम जवाब देते हैं वजह यह कि यहां एक और हदीस में मशहूर है और वो हुजूर फरमाते हैं अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकारा, कि बय्यना मुद्दई के जिम्मे है और मुनकिर के जिम्मे कसम है। तो इस हदीस से मालूम हुआ मुद्दई के जिम्मे बय्यना लाजिम है। तो हमने दोनों हदीसों को जमा कर लिया, दोनों पर अमल कर लिया कि वो जो हदीस मशहूर है वो वजूब पर महमूल है और ये जो हदीस है ये इबाहत पर महमूल है। यानी अगर मुद्दई बय्यना कायम कर देता है तो वो चीज उसको देना वाजिब हो जाता है, और अगर अलामत बयान कर देता है तो उसको देना मुबाह हो जाता है। भाई तो दोनों हदीसों पर अमल हो गया। तो ये जो अमर आया फदफाहा इलैही, इसको हम वजूब पर महमूल नहीं कर सकते कि सिर्फ अलामतों की वजह से उसका दावा मान लिया जाए और ये चीज उसको देना वाजिब हो जाए, वरना तो फिर दोनों अहादीस में तारुज आ जाएगा। भाई बात समझ में आ गई। उस मशहूर हदीस से पता चला बय्यना की वजह से देना वाजिब होगा, और इस हदीस से पता चल रहा है कि सिर्फ अलामतें देने से वाजिब होगा, तो दोनों में तो टकराव आ जाएगा। लिहाजा हदीस मशहूर को हमने वजूब पर महमूल किया और इस हदीस को हमने इबाहत पर महमूल किया कि यह अमर इबाहत के लिए है कि अगर आने वाला सही अलामतें बतला दे तो फिर उस मुल्तकिद के लिए वो लुकता उसको देना मुबाह है, जायज है। भाई तो यह माना है। फिर हदीस का तर्जमा देख लीजिए, फइन जा साहिबुहा, अगर उस लुकते का मालिक आ गया, वारफा इफासहा वअददहा, और उसने उसके थैली को बयान कर दिया, वअददहा और उनकी तादाद को बयान कर दिया, फदफअहा इलैही, तो उसके हवाले कर दे, वहाजा लिल इबाहति अमलम बिल मशहूरी, और ये अमर जो है ये इबाहत के लिए है, अमलम बिल मशहूरी हदीस मशहूर पर अमल करते हुए, वह कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल है कि आपने फरमाया है अल बय्यनतु अलल मुद्दई, के बय्यना जो है मुद्दई के जिम्मे है, अल हदीस अल हदीस मारूफुन। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, वयाखुज़ु मिन्हु कफीलन, और ये मुल्तकिद जो है उस मुद्दई से कफील ले ले, वो शख्स जिसने आकर दावा किया है कि ये माल मेरा है, ये लुकता मेरा है, और उसने सिर्फ अलामतें बयान की हैं, बय्यना कायम नहीं की, तो फिर इस सूरत में उसे जामीन ले ले। अगर उसने बय्यना कायम कर दी है फिर तो जामीन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर उसने बय्यना कायम नहीं की, सिर्फ अलामतें बतलाई हैं और ये लुकता उसको दे रहा है, तो उसे जामीन ले लो, जामीन ले लो, क्योंकि अगर बाद में कोई और मालिक निकल आया तो फिर तो इस मुल्तकिद को जमान देना पड़ेगा। भाई आप पढ़ चुके हैं कि फकीर को भी अगर ये दे देगा तो मालिक फिर भी इससे जमान ले सकता है, तो लिहाजा ये अपने इत्मीनान के लिए इस मुद्दई से जामीन ले सकता है। भाई तो कहते हैं वयाखुज़ु मिन्हु कफीलन, और ये मुल्तकिद जो है इस मुद्दई से जामीन ले लेगा, ये उस वक्त है जब सिर्फ अलामत की वजह से दे रहा है, तो ये उसे जामीन ले लेगा। इदा कान यत्फउहा इलैही, जब ये उसके हवाले कर रहा है, इस्तिसाकन, इस्तिसाक का माना है इत्मीनान हासिल करना, तो इत्मीनान के लिए अपने इत्मीन, तो ये माना है इदा कान यत्फउहा इलैही, जब वो लुकता उसके हवाले कर रहा है तो ये उसे जामीन ले ले, इस्तिसाकन इत्मीनान के लिए, वहादा बिला खिलाफिन, और ये जामीन लेना बगैर इख्तिलाफ के है, यानी हमारे तीनों इमा के नजदीक जामीन और कफील लेना सही है। لأنه يأخذ الكفيل لنفسه, इसलिए क्योंकि ये मुल्तकित अपने लिए जामीन ले रहा है, لِأَنَّهُ يَأْخُذُ الْكَفِيلَ لِنَفْسِهِ, इसलिए क्योंकि वो अपनी जात के लिए जामीन ले रहा है, بخلاف التكفيل لوارث غائب عنده, بخلاف वारिसे गायब के लिए कफील बनाना, इसमें याद रखो इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ है, साहिबैन और इमाम साहब का इख्तिलाफ है। भाई एक आदमी का इंतकाल हो गया और उसका माल वारिसों में तकसीम किया जा रहा है, अब इहतमाल है हो सकता है वारिस सिर्फ यही ना हो जो इस वक्त जमा है, हो सकता है कोई और भी वारिस हो, किसी और वारिस का होने का भी इहतमाल है, या एक शख्स का इंतकाल हुआ और कर्जखा अपना कर्जा लेने आ गए और उसके माल के जरिए सारे कर्जों की अदायगी नहीं हो सकती, तो अब यह माल इन कर्जखाहों में तकसीम किया जाएगा, लेकिन इहतमाल है हो सकता है कल कोई और कर्जखा भी आ जाए, तो मरने वाले का माल वारिसों में तकसीम करने लगे हैं, तो एहतमाल है हो सकता है कोई वारिस और भी हो जो अभी आया नहीं है, या मरने वाले का माल कर्जखाहों में तकसीम किया जा रहा है तो वहां भी एहतमाल है हो सकता है कोई और कर्जखा भी बाकी हो जो अभी ना आया हो। तो इन दोनों सूरतों में साहिबैन फरमाते हैं कि इन लोगों से कोई जामीन ले लिया जाएगा, ये जो कर्जखा हैं या वारिस जो मौजूद हैं इनसे जामीन ले लिया जाएगा कि अगर कोई और वारिस निकल आया तो उसी के मुताबिक तुम्हारे हिस्सों में कमी आएगी, लिहाजा तुम अपने जायद माल वापस दे दोगे। तवज्जो है। या इसी तरह कर्जखाहों में अगर कोई और कर्जखा निकल आया तो उसका भी कुछ हिस्सा बनेगा माल के अंदर, क्योंकि सारी अदायगी तो हो नहीं सकती, तो बहरहाल जितना जितना हिस्सा हो सकता है हर एक को अदा कर दिया जाएगा। यानी जिसका कर्जा ज्यादा है उसको माल भी ज्यादा मिलेगा, जिसका कर्जा कम है उसको माल भी कम मिलेगा, सारी अदायगी तो नहीं हो सकती। तवज्जो है। तो कुछ कुछ माल सबको देंगे लेकिन उनके कर्जों के बकदर देंगे। तो साहिबैन फरमाते हैं यहां वारिस गायब के होने का इहतमाल है, लिहाजा वारिसों से जामीन लिया जाएगा, और कर्जखाहों को जब माल दिया जा रहा है तो किसी गायब कर्जखा के आने का भी इहतमाल है, लिहाजा इनसे जामीन लिया जाएगा फिर इनके अंदर माल तकसीम किया जाएगा। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, किसी और कर्जखा का होना या किसी और वारिस का होना यह एक वहमी चीज है, और वहमी चीज की वजह से जामीन नहीं लिया जाएगा जी। वहमी चीज की वजह से जामीन नहीं लिया जाएगा, यानी यूं कहो वहां मकफूल लहू मजहूल है जिसके लिए जामीन लिया जा रहा है जी। वो जो गायब वारिस है या वो जो गायब कर्जखा है वो तो मजहूल है, तो मजहूल के लिए जामीन लिया जा रहा है, तो वहां तो इमाम साहब कहते हैं नहीं कोई जामीन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां पर तो मुल्तकित अपने लिए जामीन ले रहा है, लिहाजा यहां पर इमाम साहब भी फरमाते हैं जामीन बनाना सही है। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं बखिलाफ तकफील वारिसिन गाइबिन इंदहू, बखिलाफ गायब वारिस के लिए कफील बनाने के अंदर इंदहू इमाम साहब के नजदीक, यानी उसमें वो इख्तिलाफ करते हैं कि वहां कफील बनाना दुरुस्त नहीं है। भाई वह इजाजत दकहू, भाई इन्होंने आपको बतलाया कि अगर कोई शख्स आ गया मुल्तकीद के पास और उसने कहा ये लुकता मेरा है और उसके पास बयना नहीं है, वो सिर्फ निशानियां बतलाता है, तो मुल्तकीद के लिए जायज है कि वो निशानियों की वजह से वो लुकता उस आदमी को दे दे, लेकिन मुल्तकीद को मजबूर नहीं किया जा सकता। तो अगर मुल्तकीद उस आने वाले आदमी की तस्दीक कर दे तो क्या फिर भी इसको मजबूर नहीं कर सकते? मसला आने वाले ने निशानियां बतलाई, मुल्तकीद ने कहा हां मैं तस्लीम करता हूं ये चीज आप ही की है, तो उसकी तस्दीक कर दी उसने कि ये चीज आपकी ही है, तो क्या आप मुल्तकीद को मजबूर कर सकते हैं? अब तो उसने इकरार कर लिया है। तो कहते हैं इसमें फुकाहा का इख्तिलाफ है, बाद फुकाहा फरमाते हैं अब इसको मजबूर किया जा सकता है क्योंकि इसने खुद ही करार कर लिया है और इसके इकरार की वजह से अब इसे मजबूर किया जा सकता है, जबकि बाद फुकाहा फरमाते हैं नहीं अब भी इसे मजबूर नहीं किया जा सकता। कहते हैं वह इदासत दाका हो, और जब मुल्तकीद ने उस मुद्दाई की तस्दीक कर दी कीला, तो कहा गया है ला यूज बरू अल दफी, फिर भी इस मुल्तकीद को मजबूर नहीं किया जा सकता लुकता देने पर, कल वकील भी कब्जिल वदीअती इजाजत दका हो, जैसे वकील भी कब्जिल वदीअत होता है जब मुदा उसकी तस्दीक कर दे। सूरत यह, मेरे पास जैद ने अपनी अमानत रखवाई है और फिर जैद ने अपना एक वकील भेजा मेरे पास वो अमानत लेने के लिए, तो वकील ने आकर मुझे कहा मैं जैद का वकील हूं और मुझे वो अमानत दे दीजिए, जैद ने वो अमानत मंगवाई है, मैंने उसके तस्दीक कर दी कि हां मुझे तस्लीम है तुम जैद के वकील हो जी। फिर भी याद रखो मुदा को मजबूर नहीं किया जा सकता वो अमानत देने पर, मुदा को वो अमानत देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, अगरचे मुदा ने तस्दीक कर दी है कि ये वो उस मालिक का वकील है, क्योंकि ये बहरहाल वकील है असल मालिक नहीं है। असल मालिक हो फिर तो मुदा को, यानी जिसके पास अमानत रखवाई गई है उसको मजबूर किया जा सकता है कि अब अमानत इसके हवाले करो, लेकिन अगर मालिक का वकील आया है और मुदा ने तस्दीक भी कर दी है कि ये उसी का वकील है, फिर भी मुदा को मजबूर नहीं किया जा सकता। तो यहां पर भी ये शख्स जो हाजिर हुआ है अलामतों की वजह से कोई इसका मालिक होना यकीनी नहीं, तो सिर्फ तस्दीक की वजह से यहां भी इस लुकते को उसके हवाले करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। सूरत समझ में आई? आने वाले का मालिक होना यकीनी नहीं, चाहे बेशक मुल्तकित उसकी तस्दीक भी कर दे कि आप ही इसके मालिक हैं, फिर भी मुल्तकित को देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। यह इसी तरह है जैसे मुदा जो है वकील के तस्दीक कर दे कि हां आप जैद ही के वकील हैं, लेकिन फिर भी मुदा को मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि यह वकील मालिक नहीं है उस चीज का। तो कहते हैं वह ईदा सद्दकहू, और जब मुल्तकित ने उस मुद्दाई की तस्दीक कर दी अलामत की वजह से, कीला तो कहा गया है ला युजबरु अला दफ़, फिर भी इसको मजबूर नहीं किया जा सकता उस लुक्ता के देने पर, कल वकील भी कब्ज़ल वदीअति इज़ा सद्दक़हु, जैसे अमानत पर कब्जे का वकील होता है, इज़ा सद्दक़हु जब मुदा जो है उसकी तस्दीक कर दे। वकील और कहा गया है युजबरु कि अब मजबूर किया जा सकता है, जब इसने कह दिया कि आप ही इस चीज के मालिक हैं तो अब इसको मजबूर किया जा सकता है। लिअन्न अल-मालिका हा हुना गैरु ज़ाहिरिन, इसलिए क्योंकि मालिक यहां पर जाहिर नहीं है। वल मुदिउ मालिकुन ज़ाहिरन, और अमानत रखवाने वाला तो मालिक है ज़ाहिरन, जाहिर के एतबार से। बाज़ फुकहा फरमाते हैं कि जब मुल्तकित ने आने वाले की तस्दीक कर दी निशानियों की वजह से कि हां आप ही इस चीज के मालिक हैं, फिर इस मुल्तकित को मजबूर किया जाएगा। वजह यह है कि यहां पर मालिक जाहिर नहीं है, जबकि वो जो वकील वाले मसले के अंदर तो मालिक जाहिर था कि वकील नहीं है मालिक, दूसरा आदमी मालिक है, लेकिन यहां पर तो मालिक जाहिर ही नहीं, लिहाजा आप इस मसले को उस वकील वाले मसले पर कयास नहीं कर सकते। तो वकील वाले मसले में तो मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन यहां मजबूर किया जाएगा। तो यह माना है वकील युजबरु, और कहा गया है मजबूर किया जाएगा। लिअन्न अल-मालिका हाहुना गैरु ज़ाहिरिन, इसलिए क्योंकि मालिक जो है वो यहां पर जाहिर नहीं है, जाहिर नहीं है। वल मुदिउ, और वो जो अमानत रखवाने वाला है यानी जिसने वकील भेजा है, वल मुदिउ मालिकुन ज़ाहिरन, और अमानत रखवाने वाला तो मालिक है जाहिर के एतबार से, लिहाजा उस मसले पर आप इस मसले को कयास नहीं कर सकते। आगे देखिए भाई, वला यतसद्दकु बिल्लुक्तति अला गनियिन, यहां से बतला रहे हैं, याद रखो हमारे नजदीक की जो लुक्ता है इसको सदका किया जाएगा, और सदका फकीर पर किया जाता है, लिहाजा मालदार को लुक्ता देना या मालदार के लिए खुद लुक्ते से नफा उठाना जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं वला यतसद्दकु बिल्लुक्तति अला गनियिन, और लुक्ता जो है उसको सदका नहीं किया जा सकता मालदार पर। लिअन्न अल-मामूर बिही हुवत तसद्दुकु, इसलिए क्योंकि वो चीज जिसका हुक्म दिया गया है वो सदका करना है। लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की वजह से कि आपने फरमाया फ़इल्लम यती, अगर वो न आया यानी साहिबहा यानी लुक्ते का मालिक, फल यतसद्दक बिही, तो चाहिए कि उसका सदका कर दे। तो हदीस के अंदर मालूम हुआ सदका करने का हुक्म है। वसदकतु ला यकूनु अला गनियिन, और सदका जो है वो तो मालदार पर नहीं हो सकता। फअशबह सदकतल मफरूजता, तो ये मुशाबे हो गया उस सदके के, अल मफरूजता जो फर्ज किया गया है, यानी ये जकात की तरह हो गया, और जैसे जकात मालदार को नहीं दी जा सकती, लिहाजा ये लुक्ता भी मालदार को नहीं दिया जा सकता। व इन कान अल मुल्तकितु गनियन लम यजुज लहू अन यंतफिअ बिहा, और अगर इस लुक्ते को उठाने वाला मालदार है, लम यजुज लहू अन यंतफिअ बिहा, तो उसके लिए जायज नहीं है कि वो इस लुक्ते से नफा उठाए। वकाल शाफिअय्यु रहमहुल्लाहु तआला यजूज़ु, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुल्तकित के लिए भी इससे फायदा उठाना जायज है। लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलामु फी हदीस उबय्यिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बवजह हुजूर अलैहिस्सलाम के कौल के जो हदीस उबय इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर आया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके अंदर, फइन जा साहिबुहा फदफअहा इलैहि, कि अगर लुक्ते का मालिक आ गया तो वो लुक्ता उसके हवाले कर दे। व इल्ला फंतफिअ बिहा, वरना उस लुक्ते से नफा उठाओ। तो यह हदीस है भाई, हज़रत उबै इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है भाई, उनको लुक्ता मिला था तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया फ़इन जा साहिबुहा फदफअहा इलैही, कि अगर इस लुक्ते का मालिक आ गया तो ये लुक्ता उसके हवाले कर दे। व इल्ला फंतफिअ बिहा, और अगर ऐसा ना हुआ यानी मालिक ना आया, फंतफिअ बिहा, तो तू इससे फायदा उठा। यहां तक है हदीस। आगे इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वकान मिनल मयासीरी, और हजरत उबै इब्ने काब जो थे वो मालदारों में से थे, फिर भी हुजूरों ने फरमा रहे हैं कि तुम इस लुक्ते से फिर खुद नफा उठा लो। वली अन्नहु इन्नमा युबाहुल फकीरी, यह अकली दलील आ गई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि फकीर के लिए ये जो लुक्ते को मुबाह करार दिया गया है वो सिर्फ इसलिए है ताकि फकीर को उभारा जाए कि वो इस लुक्ते को उठा ले। जब फकीर को पता चलेगा कि तशहीर के बाद मेरे लिए खुद भी इस लुक्ते से नफा उठाना जायज होगा तो फकीर इस लुक्ते को उठाएगा जी। तो ये जो फकीर के लिए लुक्ते को मुबाह करार दिया गया है वो इसको उभारने के लिए है ताकि इस लुक्ते को उठा ले ताकि लोगों का माल महफूज हो जाए। तो कहते हैं वली अन ना हो, और इसलिए क्योंकि लुक्ते से फायदा उठाना जो है इन नमा युबाह लिल फकीरी, वो फकीर के लिए मुबाह है हमलन लहू अला रफ़ईहा, हमलन लहू उसको उभारने के लिए अला रफ़ईहा उस लुक्ता के उठाने पर सयानतन लहा उस लुक्ते की हिफाजत के लिए। वलगनी युयुशारी कुफी ही, और मालदार भी इस माना के अंदर उसके साथ शरीक है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, एक दलील उन्होंने हदीस जिक्र कर दी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत उबै इब्ने काब को लुक्ते से खुद भी फायदा उठाने की इजाजत दी तशहीर के बाद, और वो मालदार थे, मालूम हुआ मालदार भी लुक्ते से नफा उठा सकता है। और नीज वो फरमाते हैं कि जो फकीर के लिए लुक्ते को मुबाह किया गया है वो इसलिए है ताकि इसको उभारा जाए कि ये उस चीज को उठा ले ताकि मुसलमानों का माल महफूज हो जाए, क्योंकि जब फकीर को इलम होगा कि तशहीर के बाद खुद मेरे लिए भी इसे नफा उठाना जायज हो जाएगा तो वो इसको उठाएगा भाई। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस इल्लत के अंदर तो मालदार भी शरीक है, मालदार को भी जब ये पता चलेगा कि इस तशहीर के बाद मेरे लिए इस लुक्ते से नफा उठाना जायज हो जाएगा तो मालदार भी इस लुक्ते को उठाएगा और इस तरह लोगों के माल की हिफाजत होगी। तो कहते हैं वलगनी युयुशारी कुफी ही, और मालदार भी इस इल्लत के अंदर इस माना के अंदर उसके साथ शरीक है। वलाना, अब हमारी दलील आ गई, वलाना हमारी दलील यह है कि अन्नहु मालुल गैरी, कि ये जो लुक्ता है ये किसी दूसरे का माल है। फला युबाहुल इंतिफाउ बिही इल्ला बिरिज़ाहु, इस लिहाजा इससे फायदा उठाना जायज नहीं मगर उस शख्स की रजामंदी से। लितलाकिन नुसूसी, नुसूस के मुतलक होने की वजह से, नुसूस में मुतलकन दूसरों के माल से उनकी रजामंदी के बगैर फायदा उठाने से मना किया गया है। जैसे देखो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं लाता कुलो अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिली, कि तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से न खाओ। इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम, मगर यह कि तिजारत हो तुम्हारे दरमियान बाहमी रजामंदी से, बाहमी रजामंदी हो, तिजारत वगैरह के मामलात हो, फिर तो ठीक है। वैसे बातिल तरीके से किसी का माल खाना जायज नहीं है भाई। तो ये और इस तरह की और आयात हदीस वगैरह मुतलक हैं। फिर देखिए वलाना हमारी दलील यह है कि अन्नहु मालुल गैरी, कि ये लुक्ता गैर का माल है। फला युबाहुल इंतिफाउ बिही इल्ला बिरिज़ाहु, लिहाजा उस गैर की रजामंदी के बगैर इसे नफा उठाना मुबाह नहीं होगा। लितलाकिन नुसूसी, नुसूस के यानी आयात के मुतलक होने की वजह से। वल इबाहतुल फकीर लिमा रवैनाहु, और फकीर के लिए जो इबाहत है इसे नफा उठाने की। लिमा रवैनाहु, वो उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत कर दी कि हुजूर ने फरमाया फल यतसद्दक बिही, कि उल मुल्तकित इसे सदका कर दे, और सदका तो फकीर पर किया जाता है। तो कहते हैं वल इबाहतु लिल फकीरी, और फकीर के लिए इससे नफे का मुबाह होना। लिमा रवैनाहु, उस हदीस की वजह से है जिसको हमने रिवायत कर दिया। औ बिल इजमा, या इजमा की वजह से है कि सारी उम्मत का इजमा है कि सदका फकीर के लिए जायज है। और बिल इजमाई, या फकीर के लिए जो इबाहत है वो इजमा की वजह से है। फयबका मा वरा अहू अलल असली, तो इसके अलावा जो है वो अपनी असल पर बाकी रहा। इसके अलावा यानी गैर के माल से नफा उठाना वो अपनी असल और जाब्ते पर बरकरार है कि किसी दूसरे के माल से बगैर मालिक की इजाजत के नफा उठाना जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं फैब का मावरा अहू अल असली, तो इसके अलावा जो है वो बाकी रहा अपनी असल पर। वल गनी महमूल उन अल अखजी, यहां से इमाम शाफी रहमतुल्लाह की अकली दलील का जवाब दे रहे हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे ये जो लुकते को फकीर के लिए मुबह करार दिया गया है वो इसलिए है ताकि इस फकीर को उभारा जाए कि ये इस लुकते को उठा ले, क्योंकि जब इसको पता होगा कि तशहीर के बाद मेरे लिए खुद इससे नफा उठाना जायज होगा तो वो उठाएगा उस लुकते को और इस तरह लोगों के माल की हिफाजत होगी। तो यही चीज तो मालदार के अंदर भी मौजूद है, अगर मालदार को भी ये पता हो कि तशहीर के बाद मेरे लिए इस माल से नफा उठाना जायज होगा तो वो लुकते को उठाएगा और इस तरह लोगों के माल की हिफाजत होगी। तो असल मकसूद यहां क्या है, लोगों के माल की हिफाजत मकसूद है, और वो जिस तरह फकीर को उभारने से होगी इसी तरह मालदार को उभारने से भी होगी। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि वल गनी जो महमूल उन अल अखजी, हम जवाब देते हैं कि नहीं, हमें आपकी ये बात तस्लीम नहीं कि फकीर के लिए इस लुकते से जो नफा उठाना मुबाह है वो इसलिए है ताकि इसको उभारा जाए। वजह यह है कि फकीर अगर इस वजह से इसको उठाएगा कि मेरे लिए नफा उठाना जायज है तशहीर के बाद, तो इस मुद्दत तशहीर के अंदर तो फकीर के मालदार होने का भी एहतमाल है, तो हो सकता है फकीर सुस्ती करे कि मुद्दत तशहीर के दौरान तो मैं मालदार भी हो सकता हूं क्योंकि माल तो आने जाने वाली चीज है, तो इस वक्त तो मैं फकीर हूं लेकिन मुद्दत तशहीर के अंदर तो मैं मालदार हो जाऊंगा तो मेरे लिए तो इस चीज से नफा उठाना ही जायज नहीं होगा, तो फकीर उस चीज के उठाने में सुस्ती करेगा, फकीर उस चीज के उठाने में सुस्ती करेगा। लेकिन मालदार को उभारा गया है इसलिए क्योंकि हो सकता है मुद्दत तशहीर के दौरान मालदार फकीर हो जाए तो उसके लिए भी उस लुकते से नफा उठाना जायज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलगनी यो महमूलुन अलल अखजी, और मालदार जो है उसको भी लुकता उठाने पर उभारा गया है, लिहतिमाल इफ्तिकार ही फी मुद्दती तारीफ ही, इसलिए क्योंकि उसके फकीर होने का एहतमाल है मुद्दत तशहीर के अंदर। वल फकीर उकद यतवाना, और फकीर जो है वो भी कभी कभार सुस्ती करता है, लिहतिमाल इस्तिगना ही फीहा, इस वजह से कि इस मुद्दत के दौरान उसके मालदार होने का एहतमाल है, लिहाजा फकीर के लिए नफा उठाना इसलिए मुबाह करा दिया गया है ताकि वो उसको उठा ले, हमें यह इल्लत मंजूर नहीं, क्योंकि इस इल्लत के बावजूद हो सकता है वो उठाए और हो सकता है वो न उठाए, कि अगर मैं मालदार हो गया फिर तो मेरे लिए नफा उठाना ही जायज नहीं होगा तो वो इसको फिर भी नहीं उठाएगा भाई। और मालदार जो है, मालदार तो वैसे भी इस पर उभारा गया है क्योंकि माल आने जाने वाली चीज है, हो सकता है इस मुद्दत के दौरान वो मालदार फकीर हो जाए तो उसके लिए खुद भी नफा उठाना जायज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। वंतफाउ उबई इनका नबी इज़्निल इमामी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह दलील जिक्र फरमाते हैं हज़रत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस माल से नफा उठाने का हुक्म दिया था, तो उसका जवाब दे रहे हैं। वंतफाउ उबई रजी अल्लाह तआला अन्हु, और हज़रत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु का इस लुकते से नफा उठाना का नबी इज़्निल इमामी, वो इमाम की इजाजत से था, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से था। वह हुआ जाइज़ुम बि इज़्नि ही, और इमाम की इजाजत से यह जायज है जी। इमाम की इजाजत से यह जायज है, वजह यह कि यह मुश्तहद फी मसला है, इसमें इश्तिहाद की गुंजाइश है, जब भी तो हमारे नजदीक मालदार नफा नहीं उठा सकता लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक नफा उठा सकता है, मालूम हुआ इसमें इश्तिहाद की गुंजाइश है, तो यह मुश्तहद फी मसला हुआ, लिहाजा इमाम की इजाजत से यहां अमीर के लिए भी नफा उठाना जायज होगा। तो ये माना है। तो कहते हैं वंतफाउ उबई रजी अल्लाह ताला अन्हु का नबी इज़्निल इमामी, और हज़रत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु का उस लुकते से नफा उठाना वो इमाम की इजाजत की वजह से था। वह हुआ जाइज़ुम बि इज़्निही, और मालदार का नफा उठाना इमाम की इजाजत से जायज है। बात समझ में आ गई। नीज हमारे फुकाहा और भी जवाब देते हैं, वो फरमाते हैं कि बाज हदीस से पता चलता है कि हज़रत उबै इब्ने काब भी फुकारा में से थे। किस में से थे? फुकारा में से थे। तो हो सकता है हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिस जमाने में उन्हें इस लुकता से नफा उठाने की इजाजत दी, हो सकता है उस जमाने में वो फकीर हो, मालदार ना हो भाई। आगे देखिए, वह इनकान अल मुलतकितु फकीरन, और अगर वो लुकता उठाने वाला फकीर है, फला बासा भी अयन तफिया बिहा, तो कोई हर्ज नहीं है कि वो इस लुकते से नफा उठा ले, लिमा फी ही मिन तहकीक नजरी मिनल जानिबैनी, इसलिए क्योंकि इसमें रियायत साबित है दोनों जानिब की, दोनों जानिब की रियायत और शफकत है, मुलतकित उठाने वाले की रियायत हो गई कि वो इसे नफा उठा सकेगा तशहीर के बाद, और मालिक की भी रियायत हो गई कि उसको सवाब मिल सकेगा। तो कहते हैं लिमा फीहि मिन तहकीक नजरी मिनल जानिबैनी, इसलिए क्योंकि इसके अंदर शफकत को साबित करना है दोनों जानिब, वलिहादा जाज़ दफ़ु इला फकीर गैरिही, और इसीलिए जायज है इस लुकते को देना किसी दूसरे फकीर को, दूसरे फकीर को भी इसीलिए देना जायज है कि मालिक को उसका सवाब मिल जाएगा भाई। वकदा इदा कान अल फकीर अबाहु अवी बनहु अवजाव जाता हु व इन काना हुआ गनियन लिमा जकर ना वल्लाहु आलम, भाई कहते हैं इसी तरह अगर ये मुल्तकित, ये तो मालदार है लेकिन इसका बाप गरीब है या बेटा गरीब है या इसकी बीवी जो है वो फकीर है, तो इनको भी वो दे सकता है, इनको भी वो दे सकता है। तो कहते हैं वकदा इदा कान अल फकीर अबाहु, और इसी तरह है यानी इसे नफा उठाने में कोई हर्ज नहीं अगर वो फकीर जो है मुल्तकित का बाप हो, अभी बना हो या उसका बेटा हो, अवजव जाता हो या उसकी बीवी हो, वह इन काना हुआ गनीयन, अगरचे वो मुल्तकित खुद मालदार हो, लिमा जकर ना उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि इसमें दोनों जानिब की रियायत है कि मालिक को सवाब मिल जाएगा और फकीर उससे नफा उठा सकेगा। तो कहते हैं लिमा जकरना, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया, वल्लाहु आलम, और अल्लाह खूब जानने वाले हैं। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।